कल रात के बाद हम बस सभी भर गए हैं। मैंने आज बहुत से लोगों की अच्छी खबर सुनी है जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है और हम इसके लिए खुश हैं। आज रात हमारे साथ भाई ग्राहम को पाकर खुश हैं, जो यहाँ हमारे सहयोगियों में से एक आराधनालय में से हैं, जो यूटिका में होलीनेस कलीसिया के पास्टर हैं, और भाई जैक्सन वो यहाँ कल रात को थे। मैं सोचता हूँ कि वे थे या तो यहाँ श्रोतागणों के बीच कहीं तो पीछे बैठे हुए हैं। किसी ने बताया हाँ मैं अब श्रोतागणों में भाई जैक्सन को पीछे देखता हूँ। और भाई रुडेल क्या वो आज रात यहाँ पर हैं? ये हमारे एक और सहयोगियों में से हैं जो यहाँ 62 पर हैं। हमें उन्हें यहाँ अंदर पाकर खुशी हुई। और हमारे साथ ओ भाई पैट और ये सभी दूसरे भाई लोग हमारे और बाहर श्रोतागणों में हैं। हम आज रात सभी को यहाँ पाकर खुश हैं। अब यदि मैं इस बात को उचित समझूं, तो मैं उनमें से कुछ अच्छे प्रचारकों को आपसे बात करने के लिए यहाँ ऊपर लाऊंगा, क्योंकि मेरा कल रात इतना अधिक समय लेने से गला खराब हो गया है। अब मेरी पत्नी वो मेरा सुधार करती है। आप समझते होंगे भाइयों कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उसने कहा कि पिछली रात को पीछे बैठे हुए लोग मुझे नहीं सुन पाए क्योंकि मैं इस माइक में बोल रहा था। और अब इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं कुछ प्रयास करने जा रहा हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि क्या यह बेहतर है, क्या यह बेहतर तरीका है जो सबसे पीछे की ओर लोग हैं, या फिर यह माइक बेहतर है, क्या यह बेहतर है? अब प्रिय, यह एक बार मुझे तुम्हारे सामने एक संकेत मिला है। अब वे कहते हैं कि यह बेहतर है, तो ठीक है। ओ प्रभु, यह एक महिला है, यह एक अच्छी महिला है, क्योंकि यह एक लंबे समय से मेरे साथ रही है। वो अक्सर सही होती है। तो ठीक है, हमने निश्चित रूप से उन तीन रातों की सभा में बहुत अच्छा समय बिताया है, मैंने बिताया। और अब पिछली रात की टेप को छोड़कर सारी टेप, मैंने भाई गोवार्ड को फोन किया और उनसे कहा कि आकर आराधनालय के लिए टेप ले लीजिए। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं समझता हूँ कि विली पॉल अपनी कार को लेकर और चला गया, इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ टेप को नहीं लिया गया था। तो हम उस एक से चूक गए। मैंने इसे कलीसिया में रखना पसंद किया क्योंकि कलीसिया के लिए, क्योंकि यदि कोई कहे हम किस पर विश्वास करते हैं। अब आज रात मैं वो महान वार्तालाप पर बोलने जा रहा हूँ, यदि मैं समय पर प्रश्नों को ले सकता हूँ। और उसके बाद कल सुबह एक चंगाई की सभा है और हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, इसलिए हम बाहर नहीं दे सकते या बस जाकर और कहें अब मैं आपको और आपको और आपको प्रार्थना के लिए लेने जा रहा हूँ। यह सही नहीं होगा। लेकिन हम कार्डों के एक वर्ग को लोगों को देते हैं और जहाँ कहीं वे उन कार्डों के साथ हैं, मैं कुछ लोगों को मंच पर बुलाता हूँ। और फिर यदि पवित्र आत्मा प्रकट करना आरंभ करता है, फिर यह श्रोतागणों में से होकर जाता है और श्रोतागणों में से लोगों को चंगाई की सभा के लिए लेता है। और फिर कल सुबह मैं प्रचार करने वाला हूँ, प्रभु ने चाहा तो चंगाई सभा से ठीक पहले। मैं अपनी पत्नी को हंसते हुए देखता हूँ। प्रिय, क्या तुम मुझे बिल्कुल नहीं सुन सकती हो? ओह, तुम मुझे सुन रही हो, अच्छा, ये अच्छी बात है। वो पीछे की ओर बैठती है और यदि ये मुझे सुन नहीं पाती है तो वो अपना सिर हिलाती है। आपको सुन नहीं पा रही हूँ, आपको सुन नहीं पा रही हूँ। तो कल की रात पानी के बपतिस्मा की सभा के साथ एक सुसमाचारक की सभा है और उसके बाद जैसे ही मैं कल रात को प्रचार में से होकर समाप्त करता हूँ, हम पर्दों को पीछे खींचेंगे और कल रात को यहाँ पर पानी का बपतिस्मा लेंगे। यदि प्रभु ने चाहा तो, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो सुबह को मैं चाहता हूँ या कल रात में इस विषय पर बोलना चाहता हूँ। एक चिन्ह को दिया गया था। और फिर यदि हम बुधवार की रात यहाँ हैं, यदि परमेश्वर मुझे बुधवार की रात यहाँ रहने की अनुमति देता है, मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूँ। हमने पूर्व में उसके तारे को देखा है और उसकी आराधना करने को आए हैं। अब यह बस क्रिसमस की पूर्व संध्या है और फिर क्रिसमस के तुरंत बाद क्रिसमस की छुट्टी का सप्ताह है जहाँ हम सारे पत्रों को लेते हैं, भाई मर्सियर, और वे आम तौर पर उन सभी पत्रों को निकालते हैं और हम उन सभी को बिछा देते हैं और हम इन पत्रों पर प्रार्थना करते हैं और प्रभु से मांगते हैं कि हमें संसार में उस स्थान की ओर अगुवाई करे जहां हमें जाना होगा। अब वे क्रिश्चियन बिजनेसमैन के पास एक बड़ी श्रृंखला है, यही मुझे उनके सम्मेलन के लिए तुरंत फ्लोरिडा में होना है। वहां से किंगस्टन जाना है, उसके बाद वहां से हैती पर और आगे प्यूर्टो रिको में दक्षिण अमेरिका के अंदर मेक्सिको से होकर ऊपर वापस। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रभु मुझे नॉर्वे की ओर ले जा रहा है, मैं नहीं जानता क्यों। आप परमेश्वर से भेजा गया मनुष्य नामक छोटी किताब को जानते हैं? यह नॉर्वे में सबसे ज्यादा धार्मिक प्रकाशित हुई किताब है। इस पर सोचें कि प्रभु ने वहाँ क्या किया है। और जब मैं वहाँ पर था तो वे मुझे बीमारों पर हाथ नहीं रखने देते थे। मैं वहाँ पर 3 रातों तक था और उन्होंने मुझे बीमारों पर हाथ रखने नहीं दिया। तो आप देखें कि परमेश्वर क्या कर सकता है। भीड़ इतनी अधिक थी कि उन्हें घुड़सवार पुलिस घोड़े लेने पड़े थे और लोगों को सड़कों पर से बाहर हटाया गया जिससे कि मैं उस स्थान पर पहुंच सकूं। और मैंने बीमारों पर हाथ नहीं रखा, हालांकि मैंने उनके लिए प्रार्थना की, उन्हें एक दूसरे पर हाथ रखने दिया। इसलिए हाँ, तब मुझे यकीन है। अब कल सुबह, अब आज रात हो सकता है हम अब इन प्रश्नों के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ वास्तविक अच्छे प्रश्न हैं और मैं नहीं जानता कि प्रभु हमें कब तक इस पर रखेगा। और उसके बाद कल सुबह या तो बिल्ली पॉल, जीन या लियो, कोई एक 8 बजे से 8:30 बजे तक प्रार्थना कार्ड को देने के लिए यहाँ पर होगा। अब जो शहर के बाहर के लोग हैं, मुझे इसे फिर से बताने दे जिससे कि आप भूल न जाएं। यदि आप पंक्ति में आना चाहते हैं, यदि संभव हो तो हम शहर के बाहर के लोगों को लेंगे। अब कभी कभी यहाँ कलीसिया में हम एक स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ वे कहते हैं तो ठीक है, हम शहर के बाहर के लोगों को लेते हैं, उन्हें ऊपर लाते हैं। कोई कहेगा तो मैं नहीं जानता कि उनके साथ क्या तकलीफ थी। हो सकता है कि वे कह रहे हों कुछ तो तकलीफ है। तब तुम शहर के लोगों को पाते हो, कहते हैं ओह आप शायद उन्हें जानते होंगे, इसलिए तब वे कहते हैं इसे बताया गया है, तो मैं आपको बताता हूँ ये प्रार्थना कार्ड में है। तो ठीक है, उनका क्या जिनके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है? और दिन प्रतिदिन ऐसा होता आया है जब यह क्या कहा, माइक से पीछे खड़ा हो जाऊं। ठीक है, आप जानते हैं मैं हमेशा ही रास्ते के बीच में प्रचार करता हूं, तो हो सकता है मैं इसे इस प्रकार से लूंगा। क्या ये बेहतर है? ये बेहतर है, ये ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। हमारी जनता को संबोधित करने का प्रबंध यहाँ बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब, और हम अब और बेहतर होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि नया भवन तुरंत बनाया जाए, और उसके बाद जब हमारे पास बहुत जगह होगी, समझे, यदि हम यहाँ पूरा कर सकते हैं और इस स्थान को थोड़ा और बड़ा करके और कुछ और स्थान बना सकते हैं और सभाओ के लिए तैयार कर सकते हैं जब हमारे पास यहाँ वे सभाएं होती है। और अब याद रखना, सुबह को लड़के उनमें से एक या तीन जन 8:30 के बीच कार्ड दे रहे होंगे या 8 और 8:30 को। इससे सभी को आराम से बैठने का मौका मिलता है। और मैं इस बारे में बात कर रहा था कि वे कार्ड कैसे देते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं। यह व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। देखा, अब क्या हो यदि मैं यहाँ आकर ठीक अभी की तरह और कहूँ यह महिला और वो पुरुष और यह महिला आ जाएं। आप देखिए, यह एक प्रकार से यह थोड़ा सा कठिन होगा। देखा, और फिर यदि आप, बहुत सी बार मैंने ऐसा किया है, और यदि वे सुबह के समय बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं तो मैं इसी तरह से काम कर सकता हूँ। मैं कहूँगा यहाँ कितने लोग शहर से बाहर के हैं, आपके साथ कुछ तो गलत हुआ है, आप खड़े हो जाएं। भाई मर्सियर, आप मेरे राहत देने के लिए आएंगे, आप मेरी मदद करेंगे। ओह, आप आ रहे हैं, वे अपने खुद के राहत के लिए आ रहे हैं। मैंने आज आपकी महिला मित्र से बात की, अब बेहतर होगा कि आप मेरे लिए वास्तव में लाभदायक हो, समझे। तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं उस हिम्मत की प्रशंसा करता हूँ भाई लियो। जब यह सही नहीं होता है तो आओ हम इसे उतना ही सही कर लें जितना हम जानते हैं कि इसे कैसे किया जाए, जितना बेहतर हम कर सकते हैं। सो अब उसके बाद शहर के बाहर के लोगों से उनके हाथ उठाने के लिए कहता हूँ जिनके साथ कुछ तो तकलीफ है, और फिर बस वहाँ खड़े होकर एक व्यक्ति पर समर्पित करें जब तक पवित्र आत्मा आरंभ नहीं करता और सारी सभा के लोगों को ना ले ले। यहाँ कितने लोग थे जब उन्होंने देखा है ऐसा यहाँ किया गया है? निश्चय ही देखा, समझे? इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह से है। यह बस मैं चाहता हूँ कि आप इसे याद रखें और मैं सुबह फिर से इस पर जाने की कोशिश करूँगा। अन्य जातियों जो सुसमाचार उन्हें दिया गया है, यह एक विश्वास का सुसमाचार है, काम बिल्कुल भी नहीं। देखा, और जैसा मैंने कल रात कहा था, जब पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन उतरा, जब वे यहूदियों के पास गए, प्रेरितों के काम 19:5, उन्हें उन पर हाथ रखना था जिससे कि वे इसे पालें, और जब वे सामरियों के पास गए, उन्हें उन पर हाथ रखना था। लेकिन जब वे अन्य जातियों के पास आए, कुरनेलियस के घर में, जब पत्रस इन वचनों को बोल रहा था, ना ही उनके ऊपर हाथों को रखते हुए, जब वो छोटी लड़की मर गई, याइर की बेटी, वो याजक, उसने कहा आकर उस पर हाथ रख और वो जीवित हो जाएगी। लेकिन जब रोमी सेनापति उस अन्य जाति ने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी छत के नीचे आए, शब्द को बोल, बस इतना ही, समझे? सुरुफिनी स्त्री, यूनानी, वास्तव में वो जो थी जब यीशु ने उससे कहा यह बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना मेरे लिए उचित नहीं है, उसने कहा, यह सच है प्रभु, लेकिन तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने कहा, इस बात के कहने से दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। तब अच्छी बातों को कहें, किसी के बारे में कुछ तो अच्छा कहो, यीशु के विषय में बात करें, कुछ तो वफादारी से कहें, कुछ तो सच्चा। शैतानों से छुटकारा पाने का यही तरीका है। उसने कभी नहीं कहा, उसने कभी भी लड़की के लिए प्रार्थना नहीं की, उसने उसके चंगे होने के विषय में कभी एक बात भी नहीं कही, उसने इतना ही कहा, इस बात के कहने से। हैटी राइट, एक दिन उसने कुछ भी नहीं मांगा, वो बस वहीं पर बैठी हुई थी, लेकिन सही चीज को कहा, जिससे पवित्र आत्मा प्रसन्न हुआ, और पवित्र आत्मा वापस बोला और कहा, हैटी, जो कुछ भी तुम चाहो मांग लो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है और तुम चाहो, पता लगाएं कि यह सच है या नहीं, कुछ भी मांग लो। उसकी छोटी अपाहिज बहन की चंगाई, जो बुरी अवस्था में वहाँ बैठी हुई थी, $10,000 ताकि उसे वहाँ फिर कभी पहाड़ियों पर खुदाई न करना पड़े, या उसके बूढ़े शरीर को जवानी में वापस लाना हो। तुम जो कुछ चाहो मांग लो, तुम इसे ठीक अभी मांग लो, यदि वो अभी आकर और तुम्हें यह नहीं देता तो मैं एक झूठा नबी हूँ। यह कुछ तो है, क्या ये नहीं है? यीशु ने कहा, इस पहाड़ से कहो, और आपने सुना है किस बात ने जगह ली थी, यही वो सेवकाई है जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। हम अब उस रास्ते पर हैं, जल्द ही प्रभु यीशु का आगमन है, और हमारे पास एक कलीसिया में रैप्चर का विश्वास होना चाहिए, जो हमें यहाँ से निकलने के लिए पल भर में पलक झपकते ही बदल सके, या तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन चिंता मत करो, ऐसा वहाँ होगा, और जब इस कलीसिया की सामर्थ बढ़ने लगती है तो यह अपने भाइयों को लाएगी, उस कलीसिया की सामर्थ दूसरे भाइयों को ले आएगी, तब वहाँ एक सामान्य पुनरुत्थान होगा, और हम इसके लिए आगे देख रहे हैं। अब मत भूलना, प्रार्थना कार्ड सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक मिलेंगे, फिर मैं उनसे चाहता हूँ कि जितने भी अंदर थे उसके बाद बस कार्ड देना बंद कर दें और पीछे जाकर और बैठ जाएं, समझे? क्योंकि वे उन सभी को शायद उस समय तक किसी भी तरह से कार्ड दे देंगे, या ज्यादा से ज्यादा हम वहाँ से कहीं से लेने की कोशिश करेंगे। कार्ड बांटने वाला उठकर ठीक आपके सामने सारे कार्ड को मिला देगा, फिर यदि आप एक चाहते हैं या इस तरह से उससे अधिक चाहते हैं, फिर जब मैं अंदर आऊँगा तो मैं बस जहाँ कहीं प्रभु कहता है कि वहाँ से बुलाओ, और यदि उसने कहा बिल्कुल मत बुलाना, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। देखा, बस जो कुछ भी है, और मैं वो सेवकाई किसी भी तरह लुप्त होने पर है, वहाँ कुछ तो और बढ़कर आ रहा है। याद रखें, यही है जो हर समय इस मंच पर से या इस पुलपिट पर कहा गया है, और यह अब तक कभी भी विफल नहीं हुआ है। आपको हाथ रखने के बारे में सेवकाई याद है? देखा, इसने क्या किया? हृदय के विचार, देखा इसने क्या किया? अब इसे देखें, शब्द को बोलो और देखें कि यह क्या करता है। देखा, मैंने आपको यहाँ वर्षों पहले बताया था, कलीसिया, मैं इस भवन के लोगों से बात कर रहा हूँ, वर्षों पहले, 3 या 4 वर्ष पहले, कुछ तो प्रकट रूप लेना तय है, यह होना तय है, और यहाँ यह अब खुलते जा रहा है, ठीक, यह अपने आप में आकार ले रहा है।
Years ago,
अब हम इसके लिए आभारी हैं। ओह, हम कितने आभारी हैं, बस बहुत ही खुश। अब हमारे पास यहाँ कुछ बहुत ही कठिन प्रश्न हैं और सीधे हम उन पर जाना चाहते हैं। किसी ने तो इन सभी किताबों को देखा जो मेरे पास थी। मैंने कहा तो एक चतुर व्यक्ति को बस एक की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं एक चतुर व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे देखने के लिए उनमें से बहुत कुछ होना है। खैर, यह द्विभाषी संस्करण है और यह एक बाइबल है और यह एक तालमेल या सहमति है। तो यह एक, हम बस प्रभु से मांगेंगे कि हमारी सहायता करे और हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निर्देशित करे, केवल उसकी दैविक इच्छा और उसके वचन के अनुसार। सो आइए अब हम प्रार्थना के लिए बस एक क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु, हम हमारे हृदय की गहराइयों से आपके धन्यवादित हैं जो कुछ आपने इन पिछले 3 रातों में हमारे लिए किया है। ओह, वहाँ पीछे कमरे में सेवकों को भेंट करते हुए देखना और हाथों को मिलाते हुए और नए सिरे से विश्वास को देखना और एक नए कदम को उठाते देख, फोन पर बात करते हुए और हमारे हृदय आनंदित हो रहे हैं और वे आपके वचन को देखने के बाद लोग पवित्र आत्मा को पा रहे हैं। किस तरह से यह बिल्कुल ठीक एक एक करके बताता है कि किस तरह से आपके पवित्र आत्मा को पाना है। हम इसके लिए बहुत ही आभारी हैं प्रभु। आप हमारे लिए चीजों को इतना साधारण बना देते हैं क्योंकि हम एक साधारण से लोग हैं। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमेशा ही हमें पूरी तरह से अपने आप को साधारण बनाने देंगे, क्योंकि ये यही वो जाति है जो खुद को नम्र करती है उसे ऊंचा किया जाएगा। और संसार का ज्ञान परमेश्वर के लिए मूर्खता है। यह परमेश्वर को प्रसन्न करता है कि मूर्खता के प्रचार करने के द्वारा उन्हें बचाए जो खोए हुए थे। और अब पिता, यहाँ मेरे अधिकार में बहुत से प्रश्न हैं जो ईमानदार हृदय के द्वारा पूछे गए हैं, जो मुद्दे हैं, और उनमें से एक गलत दिया गया उत्तर हो सकता है उस व्यक्ति को गलत रास्ते पर फेंक दे। उनके प्रश्न पर गलत दृष्टिकोण डालना यही है जो उन्हें चिंतित कर देता है। इसलिए प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा हम पर मंडराए और इन बातों को प्रकट करे, क्योंकि ये वचनों में लिखा है, मांगो और तुम्हें यह दिया जाएगा और ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और यह तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और यही है जो हम अभी कर रहे हैं प्रभु, आपकी दया के द्वार पर खटखटा रहे हैं। आपके दैविक न्याय की परछाई में खड़े होकर हम परमेश्वर के मसीह के लहू और पवित्र आत्मा के लिए याचना करते हैं। और हम आज रात केवल इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि हमने पवित्र आत्मा पर प्रचार करने की उन 3 रातों को समाप्त किया है। हम सबसे गहरे आदर और ईमानदारी के साथ आए हैं। हम आते हैं जैसे कि यह आखिरी रात है जो हम धरती पर अब तक रहे हैं। हम विश्वास करते हुए आते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। और प्रभु, अब आपसे हम मांगते हैं कि आपके अनंत जीवन से हमें संतुष्ट करें और आपके वचन के उत्तर देने में होने पाए पवित्र आत्मा। ओ परमेश्वर, जैसा कि हमने पाया कि यह आप ही हमारे बीच में हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि वो आज रात हम पर उन चीजों को प्रकट करे जिनकी हम इच्छा करते हैं। और हम केवल ये इच्छा रखते हैं कि हमारे प्राण विश्राम में हो और हमारे मनों में शांति हो और परमेश्वर में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने के लिए, ताकि उन आशीषों का दावा करें जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है। हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब मेरे पास एक को छोड़ सारे प्रश्न हैं जो मुझे दिए गए थे, और मैंने छोटे भाई मार्टिन को उत्तर दिया जिसने परसों रात को मुझसे एक प्रश्न पूछा था, केवल एक। कल रात को यहाँ बहुत सारे थे लेकिन यह प्रार्थना की विनती थी। और भाई मार्टिन ने मुझसे यूहन्ना 3:16 के बारे में प्रश्न पूछा, या यूहन्ना 3 मैं सोचता हूँ जो इस विषय में है, जब तक मनुष्य पानी और आत्मा से न जन्मे वह राज्य को नहीं देख सकता, और उसकी तुलना उस टेप से की जिसे मैंने इब्रानियों पर भेजा था। और मैं कल शाम यहाँ पीछे के कमरे में उनसे मिला, और इससे पहले मुझे उसे उत्तर देने का मौका मिला, और तब मैंने इस विषय पर वहाँ उत्तर दिया। अब क्या यहाँ कोई है जो कल रात यहाँ पर नहीं था? आइए आपके हाथों को देखते हैं जो कल रात यहाँ पर नहीं थे। ओह, हम निश्चय ही सोचते हैं कि आप हमारे साथ होते। हमारे पास बहुत ही शानदार समय था। पवित्र आत्मा, मैं हो सकता है बस एक मिनट के लिए इससे दुख नहीं पहुँचेगा, यह टेप किया गया है, और यदि कोई सेवक ऐसा है या कोई व्यक्ति जो इस बात से असहमत होता है जो मैं अभी क्या कहना चाह रहा हूँ, या उन प्रश्नों में भी, मैं पूछता हूँ भाई कि आप इसे अटपटा नहीं समझेंगे, लेकिन यह याद रखना कि यह टेप यहाँ हमारे आराधनालय में बनाया जा रहा है। हम हमारे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। विभिन्न विश्वास के बहुत से सेवक हर कहीं बैठे हुए हैं, और मैं फिर से इस विषय में जाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे कुछ लोग हैं जो कल रात को नहीं आ सके, जिन्हें मैं आज रात को देख रहा हूँ, और मैं कुछ समय के लिए इसमें से होकर जाना चाहता हूँ, यदि आप इसकी अनुमति दें, जिस पर मैंने पिछली शाम को बताया था, और यह पेंटिकॉस्ट पर था, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने पर था। अब इस यूनानी अनुवाद के सुस्पष्ट द्विभाषी संस्करण को पढ़ते हुए, जहाँ पर मैं पिछली शाम को था, जो अब मेरे सामने खुला हुआ रखा है, यह मूल अनुवाद यूनानी से अंग्रेजी में है। यह अन्य अनुवादकों के जरिए से नहीं होता है, यह और अन्य संस्करण से, यह सीधा यूनानी से अंग्रेजी में है। अब अंग्रेजी शब्द बहुत बार उनके लिए ऐसे अर्थ होते हैं, जैसे कि मैं अभी कहूँगा बोर्ड, उस बोर्ड शब्द को ले, आप कहेंगे तो ठीक है, उसका मतलब कि हम उसे बोर कर रहे थे। नहीं, ओह, उसने अपने खाने का बोर्ड या भुगतान किया? नहीं, अच्छा, वह यह घर के किनारे पर एक बोर्ड है तो देखा, या उनमें से कोई भी चार या पांच अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तब आपको वाक्य समझेगा। वो शब्द सी या देखना, देखना मतलब समझना अंग्रेजी में, सी या समुद्र का अर्थ है पानी का समूह, सी या देखने का मतलब देखें, उसकी ओर देखो, देखा। लेकिन इन अनुवादों पर यहाँ जिस शब्द का उपयोग किया गया है, जिसके बारे में मैंने पिछली रात परिणीतों के काम दूसरे अध्याय में बोला था, जहाँ ये कहता है उन पर अग्नि की जीभें उन पर ठहर गई। अब मैं बस कुछ क्षण के लिए पीछे जाना चाहूँगा, क्या आप चाहते हैं बस कुछ क्षण के लिए, और इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, कुछ क्षण के लिए एक प्रकार से दोहराएं। अब आप अपने किंग जेम्स में से या जो भी अनुवाद से आप पढ़ते हैं उसे खोलें, और मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ, और अब जरा ध्यान से सुनना, गलत मत समझना। आज बहुत लोगों ने, यहाँ तक मेरी बहन ने भी, उनमें से बहुतों ने फोन किया, कहा श्रीमती मार्गन, उनमें से बहुत से कल शाम को थे। श्रीमती मार्गन हमारी बहनों में से एक हैं जिसे छोड़ दिया गया था, और वह 16-17 साल पहले लुइस विले में मरने वाले लोगों की सूची में कैंसर के साथ थी। मुझे लगता है कि वो आज रात फिर से यहाँ पीछे बैठी हुई है, वो सुन नहीं पा रही है। उसने कहा, क्योंकि मैं सीधे माइक में से बोल रहा था, और उनके कारण मैं कुछ क्षण के लिए इस माइक पर जाना चाहता हूँ। अब मैं प्रेरितों के काम 2 के इस वचन में से पढ़ रहा हूँ, जब पेंटिकॉस्ट का दिन पूरी तरह से आया तो वे सब एक मन में थे। अब मैं इसे पसंद करता हूँ, एक सहमति होने से अधिक ये बेहतर है, क्योंकि आप किसी भी विषय पर सहमति जता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका मन एक जैसा था, एक मन और एक ही स्थान में, और एकाएक वहाँ आकाश से तेज आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और इससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे भर गया। ना ही घुटने टेके हुए, ना ही प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन बैठे हुए थे। बटी हुई जीभें, TONGUES, जीभें, बटी हुई, अर्थ विभाजित। जीभें उन्हें दिखाई दी जैसे आग और एक वचन उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब भर गए थे और साथ ही और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब वहाँ आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ऐसा हुआ था और यह खबर हर कहीं फैल गई, तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वो उसकी अपनी भाषा में बोल रहे हैं। अब ध्यान दें, जब आग आई ये जीभें थीं, जब वे बोल रहे थे ये भाषा थी। अब वहाँ जुबानों और भाषाओं के बीच बहुत बड़ा अंतर है। हमारे लिए यह सब समान है, लेकिन यूनानी में जुबान का अर्थ ये होता है, कान यह है। देखा, इसका मतलब भाषा नहीं है, इसका मतलब है आपके शरीर का वह भाग जो जीभ है। यदि आप ध्यान दें तो इसका अनुवाद किया गया आग की जीभें, जिसका अर्थ है जुबान के जैसे, बस जैसे आग की जीभें, आग की एक बड़ी लपट। अब इस बात पर जोर को देखें और उन स्थानों में से हर एक, अब इसे मत भूलना, अब हम आज रात थोड़ा नाटक बताने जा रहे हैं और मैं इसे आप पर छोड़ूंगा। अब याद रखना, यदि कुछ विपरीत है तो यह आप पर निर्भर करता है, लेकिन केवल एक ही जरिया है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, वो है विश्वास के द्वारा। और इससे पहले कि आप कर सकें, मुझे जानना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, इससे पहले मैं उसमें विश्वास कर सकूँ मैं क्या कर रहा हूँ। आपने अपनी पत्नी से विवाह क्यों किया? आपको उस पर विश्वास था, आपने उसे परखा था, उसे देखा था कि वो किस से आई है, वो कौन थी। इसी तरह से वचन के साथ है, परमेश्वर के साथ है। यही है जो इन दर्शनों को बनाता है, इस आग के खम्बे को या ये सारी चीजें, क्योंकि परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। मैंने उसके वचन के द्वारा उसे चखा है और जानता हूँ कि यह सच्चाई है, और आप उसके वचन का पालन करते हैं। फिर यदि वहाँ कहीं तो जरा सी भी गड़बड़ होती है, तब कहीं तो कुछ गलत है, क्योंकि परमेश्वर, सुनना, परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं किया या अपने आप से कभी काम नहीं करेगा या उसकी अपनी व्यवस्थाओं के विपरीत नहीं करेगा। सर्दियाँ गर्मियों में नहीं आएंगी और गर्मियाँ सर्दियों में नहीं आएंगी। पत्तियाँ वसंत ऋतु में गिरकर और पतझड़ में फिर से वापस नहीं आती हैं। आप इसे बस ऐसा नहीं बना सकते हैं। जैसा कि मैंने कल रात उमड़ते हुए कुएं के बारे में कहा था, आपकी फसल को पानी देता है, या यदि आप यहाँ एक खेत के बीच में खड़े होते हैं और यह घोर अंधेरा है और आप कहते हैं, ओह बड़ी बिजली, मैं जानता हूँ कि तुम खेत में हो, अब मैं खो गया हूँ, पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे प्रकाश दो जिससे कि मैं देख सकूँ कि कैसे चलना है। वहाँ खेत पर प्रकाश होने के लिए पर्याप्त बिजली है, यह सच है। जी हाँ श्रीमान, इस कमरे में इतनी बिजली है कि इसे यहाँ तक बिना उन प्रकाश के भी रोशन कर सकते हैं, बिना उसके, लेकिन आपको इसे नियंत्रित करना होगा। अब आप उस पर चिल्ला सकते हैं, आप अब और चिल्ला नहीं सकते, तब तक यह कभी भी रोशन नहीं होगा, लेकिन यदि आप बिजली के नियमों के अनुसार काम करेंगे तब आपको प्रकाश मिलेगा। खैर, यह ठीक उसी तरह से परमेश्वर के द्वारा होता है। परमेश्वर आकाश और धरती का महान सृष्टि करता है, वो कल, आज और हमेशा एक सा है, वह अब भी परमेश्वर है, लेकिन वो तभी काम करेगा जब आप उसके नियमों और निर्देशों का पालन करेंगे। मित्रों, मैं ये कहता हूँ, मैंने इसे कभी असफल होते हुए नहीं देखा और यह नहीं होगा। अब आइए ध्यान दें, यीशु ने 24:49 में प्रेरितों को आज्ञा दी थी कि उनके वचन के अनुसार बचाए जाने और पवित्र किए जाने के बाद प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उन्हें धर्मी ठहराया। यूहन्ना 17:17 में पवित्र किए गए, जब यीशु ने कहा, पिता सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करें, तेरा वचन सत्य है, और वो वचन था। अब उन्हें बीमारों को चंगा करने, दुष्ट आत्माओं को निकालने, मरे हुओं को जिलाने की सामर्थ्य दी और वे आनंदित होते हुए वापस लौटे और उनके नाम मेमने की जीवन की किताब में थे। आपको याद होगा कि अब हम इन बातों में से होकर किस तरह से आए हैं, लेकिन वे अभी तक परिवर्तित नहीं हुए थे। यीशु ने पतरस को उसके सूली पर चढ़ाए जाने की रात को बताया। उसने कहा, तुम्हारे परिवर्तित होने के बाद तब अपने भाइयों को मजबूत करना। पवित्र आत्मा जो आप अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो ये अनंत जीवन है। आप विश्वास करते हैं, आप पवित्रीकरण में आत्मा से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन कभी भी आत्मा से जन्म नहीं लेते हैं जब तक पवित्र आत्मा अंदर नहीं आता है। यह सही है। माँ के गर्भ में एक बालक को जीवन मिलता है। छोटी छोटी मांसपेशियां कमपन हो रही होती हैं, यही जीवन है। लेकिन ये अलग जीवन है जब यह उसके नथनों के अंदर जीवन की सांस को लेता है, यह एक अलग होता है। यही है, यह है मेरे प्रिय मेथोडिस्ट भाइयों और पिलग्रिम होलीनेस और नाजरीन, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पवित्रीकरण से भिन्न होता है। पवित्रीकरण ये साफ करना होता है जो कि जीवन की तैयारी है, लेकिन जब पवित्र आत्मा अंदर आता है तो ये जीवन होता है। तैयारी करना बर्तन की सफाई करना है, पवित्र आत्मा बर्तन को भरता है। पवित्रीकरण का अर्थ है साफ किया गया और सेवा के लिए अलग रखा गया। पवित्र आत्मा इसे सेवा में रखता है। आप वो बर्तन हैं जिसे परमेश्वर ने साफ किया है, और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो स्वयं आप में है। मूसा के साथ आग के खंभे में परमेश्वर आपके ऊपर था, यीशु मसीह में परमेश्वर आपके साथ था, अब पवित्र आत्मा में परमेश्वर आपके अंदर है। कोई तीन ईश्वर नहीं, तीन कार्य स्थानों में काम करने वाला एक परमेश्वर। परमेश्वर अपने स्तर से नीचे आते हुए मनुष्य के ऊपर से नीचे आ रहा है। वो उसे छू नहीं सकता था क्योंकि उसने अदन की वाटिका में पाप किया था और उसकी संगति से अपने आप को अलग किया था। तब क्या हुआ? उसे उसके ऊपर होना था। बैलों और बकरियों का लहू उसे फिर से मनुष्य के साथ संगति नहीं करने देता है, लेकिन व्यवस्थाओं और विधियों के द्वारा जो इस समय के आने की पूर्व छाया को बताता है कि बैल और इत्यादि और भेड़ बकरियों की बलि चढ़ाना। फिर जब परमेश्वर नीचे आया और एक पवित्र शरीर में वास किया, एक कुंवारी स्त्री से जन्मा, वो स्वयं परमेश्वर। आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन बस उसने अपना तंबू हमारे बीच में रखा। परमेश्वर ने तंबू में वास किया जो यीशु मसीह कहलाया। उसने बस हमारे साथ अपना तंबू खड़ा किया, वो बना। मैं सुबह को उस पर प्रचार करूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं। अब वो परमेश्वर किस तरह से तंबू या हमारे साथ रहा था, और अब परमेश्वर हम में है। यीशु ने योहन्ना 14 में कहा, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, और मैं तुम में और तुम मुझ में। परमेश्वर हम में उद्देश्य क्या था? ताकि उसकी योजना को पूरा करे। परमेश्वर के पास एक योजना थी, वो मनुष्य के बीच काम करना चाहता था, और उसने इसे आग के खंभे में लाया जो कि रहस्यमयी आग थी जो इसराइल के बच्चों के ऊपर मंडरा रही थी। उसके बाद वही आग यीशु की देह में प्रकट हुई और उसने कहा कि वो वही आग था। इससे पहले अब्राहम था, मैं हूँ, वो वही आग थी। उसने कहा, मैं परमेश्वर से आया हूँ और मैं परमेश्वर के पास वापस जाता हूँ। और उसकी मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने के बाद संत पौलुस ने उससे रास्ते पर भेंट की, जब उसका नाम अब भी शाउल था, दशमिश के रास्ते पर, और वो वापस फिर से उस आग के उस खंभे में बदल गया। एक रोशनी ने उसकी आंखें बाहर कर दी। ये सही है, और वो आज यहाँ पर है। वही आग का स्तंभ, वही परमेश्वर उन्हीं चिन्हों को कर रहा है, वही कार्य कर रहा है। क्यों? वह अपने लोगों के बीच काम कर रहा है। वो हम में है, मैं वो अब तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं तुम में रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक कि तुम में होऊंगा, समापन के अंत तक, संसार का अंत, वो हमारे साथ होगा। अब ध्यान देना, यीशु ने उन्हें आज्ञा दी थी कि ऊपर यरूशलेम में जाकर रुके रहो। ठहरे रहो शब्द का अर्थ है रुके रहना, मतलब प्रार्थना करना नहीं होता है, मतलब रुके रहना। वे अभी तक प्रचार करने की उचित अधीनता में नहीं थे क्योंकि वे केवल उसके व्यक्ति के द्वारा उसके पुनरुत्थान को जानते थे, उसे बाहर आने की ओर से देखते हुए। उसने उन्हें आज्ञा दी कि वे अब और प्रचार न करें जब तक उन्हें ऊपर से सामर्थ नहीं मिल जाती, तब तक कुछ न करें। मैं विश्वास नहीं करता कि कोई भी प्रचारक जो परमेश्वर का भेजा हुआ है या सही ढंग से ठहराया जा सके, क्योंकि परमेश्वर अनंत है और जो परमेश्वर एक बार करता है वो हर समय करता है। अब यदि परमेश्वर उन्हें तब तक प्रचार नहीं करने देता है जब तक कि वे पेंटिकॉस्ट तक नहीं आ जाते और पेंटिकॉस्ट के अनुभव को नहीं पा लेते, ना ही मनुष्य जब तक कि उसकी खुद की तीव्र इच्छा न हो या कोई भी संस्था उसे मान्यता नहीं देती है, उसके पास एक पुलपिट पर प्रचार करने का अधिकार तब होता है जब तक वह पवित्र आत्मा से भर नहीं जाता। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि ये किसी संगठन की बौद्धिक विचारधारा के द्वारा उनका नेतृत्व कर रहा होता है जब तक कि वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ न हो, और तब वो उन्हें पिंडुक का भोजन देता है, मेमना और पिंडुक, जैसा कि हमने पिछली शाम को इस पर बोला था। अब ध्यान दें, उसने कहा ऊपर यरूशलेम को जाओ और वहाँ बने रहो, बस रुके रहो जब तक मैं पिता की प्रतिज्ञा को ना भेज दूं। और फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ उनमें से 120 लोग थे, पुरुष और स्त्रियाँ, वे मंदिर के एक ऊपरी कमरे में चले गए। अब ये पेंटिकॉस्ट के पर्व का दिन निकट था, भवन के शुद्धिकरण से लेकर पास्का मेमने को घात करना उस पेंटिकॉस्ट के आने तक जो कटनी का पहला फल था, वो जुबली, पेंटिकॉस्टल जुबली। और इमारतों पर, अब मैं उन देशों में रहा हूँ, पूर्वी देशों में अंदर से शायद ही कभी सीढ़ी होती थी, सीढ़ियाँ बाहर की ओर होती थी। हमें बताया गया है कि मंदिर के बाहर एक सीढ़ी थी जो एक छोटे से कमरे के रास्ते तक जाती थी, ऊपर जाने के लिए और ऊपर और ऊपर, जब तक आप ऊपर एक छोटे से कमरे तक नहीं पहुंच जाते। मंदिर के सबसे ऊपर में एक गोदाम कक्ष के जैसा होता है, किसी प्रकार का एक छोटा सा कमरा, एक ऊपरी कोठी। और बाइबल ने कहा कि वे वहाँ पर थे और द्वार बंद थे, क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि प्रभु यीशु की आराधना करने पर उन्हें खींचकर अलग कर देते थे, उस महायाजक केफा और पुंतियुस पिलातुस और उनके उसे मार डालने के बाद। और वे सारे नाम के कहलाने वाले मसीहों से छुटकारा पाने जा रहे थे, और द्वार बंद थे और वे रुके हुए थे। अब उस तरह के कमरों में वहाँ खिड़कियाँ नहीं होती हैं, दरवाजे के साथ खिड़कियों के छोटे जरोखे जैसी चीजें थी, आप खींच कर खोल दें। उन कमरों में तेल के छोटे छोटे दीपक होते हैं जो नीचे की ओर लटकते और जलते हैं। यदि आप कभी कैलिफोर्निया में क्लिफ्टन के जलपान गृह में गए हैं, तहखाने में नीचे जाएं और आप बिल्कुल ऊपरी कोठरी की तरह का देख सकते हैं। क्या पहले कभी आप वहाँ पर गए हैं, या कितने लोग वहाँ पर गए हैं? मैं देखता हूँ कि लोग अपने सिर हिला रहे हैं। तो ठीक है, आप जानते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, वहाँ आप नीचे जाएं और आप गतसमनि के बगीचे को देखेंगे। इससे पहले आप जाएं, आप उन पूर्वी वासी के कमरों में से एक कमरे में जाएंगे। यह बिल्कुल सच है, वहाँ आप जलते हुए जैतून के तेल से भरा एक छोटा दीपक देखते हैं, जिसमें छोटी ऊन की बाती रखी हुई होती है। अब आइए हम कहेंगे कि वे वहाँ ऊपर थे, इस पर बाहर से होकर चढ़ रहे थे, वे वहाँ जाकर छिप गए क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे। यीशु ने उन्हें ऊपरी कमरे में जाने के लिए नहीं कहा, उसने इतना ही कहा, यरूशलेम में रुके रहो। वे यहाँ एक घर में थे, यह कहना मुश्किल था कि क्या बात जगह लेगी, वे अंदर आकर और उन्हें पकड़ लेंगे। सो वे ऊपर के एक छोटे से पुराने कमरे में चले गए जो वहाँ ऊपर अटारी में था, और वहाँ कमरे को बंद कर दिया ताकि यहूदी उनमें उन तक न पहुँच सके, और वे 10 दिन तक वहीं ठहरे रहे। अब हम प्रेरितों के काम एक में हैं। अब ध्यान से सुने, आपको तस्वीर मिल गई। इमारत के बाहर छोटी सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती हैं, और वे इस छोटे से कमरे में चले गए। वहाँ नीचे मंदिर में वे पेंटिकॉस्ट का पर्व मना रहे थे। ओह, वहाँ बहुत अच्छा समय चल रहा था। अब जब पेंटिकॉस्ट का दिन पूरी तरह आ गया, तो वे सब एक मन के साथ थे, एक मन, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को भेजने जा रहा है। यहाँ पर आज रात हर एक व्यक्ति को उसी मन में आने दो, और देखो कि क्या बात जगह लेती है, इसे दोहराया जाना है। यह बस वही प्रतिज्ञा है जैसी उनके पास थी, समझे? वे क्या कर रहे थे? निर्देशों का पालन कर रहे थे, उन परमेश्वर के नियमों का पालन कर रहे थे। रुके रहो जब तक। अब वे यहूदियों से डरते थे। अब इसे याद रखें, वे यहूदियों से डरते थे। अब अचानक तेज सनसनाती आंधी की जैसी आवाज आई। यह कोई तेज आंधी नहीं थी, यह एक तेज आंधी के समान थी। मैं अनुवाद करने वाले पर कुछ ही मिनटों में टिप्पणियों को पढ़ूंगा। यह एक सनसनाती आंधी के समान थी। दूसरे शब्दों में यह एक अलौकिक आंधी थी। ओह, कुछ तो ऐसा जो वे महसूस कर सकते थे। वो आंधी उनके अंदर थी। वहाँ एक तेज सनसनाती आंधी आई। तेज सनसनाती आंधी के जैसे आंधी सनसनाती हुई नहीं थी, लेकिन यह तो केवल एक तेज सनसनाती आंधी की तरह लग रही थी, जैसे कुछ तो चल रहा हो। क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? ओ प्रभु, तेज सनसनाती आंधी की तरह। अब देखो, और इसने भर दिया। अब यहाँ इसने कहा वे सारे, लेकिन यूनानी में इसने कहा संपूर्ण, बड़े अक्षर में WHOLE, संपूर्ण भवन। वहाँ हर जगह पर, हर एक दरार, कोना और खाचा इससे भरा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा नहीं कहा, कहो भाइयों, क्या आप वही महसूस कर रहे हो जो मैं महसूस करता हूँ? नहीं, यह पूरी तरह से हर स्थान पर था, एक तेज सनसनाती आंधी के जैसे। अब देखो, वहाँ एक सनसनाती आंधी के जैसे आवाज आई, और संगम या जोड़, अब उन्हें देखें, और यदि आप जोड़ नहीं करते हैं तो आप इसे कुछ तो कहते हैं जो ये नहीं कहता है, समझे? और जैसे यही है जो पहले हुआ, वो एक आवाज थी, कुछ तो जैसे एक सनसनाती आंधी उनके ऊपर आती है। और आपको याद है, पिछली रात मैं किराने की दुकान गया और कुछ डबल रोटी और कुछ गोश्त खरीदा। ऐसा ही है जो इसके साथ कुछ हुआ। रोटी एक चीज होती है, गोश्त दूसरी चीज है। और आवाज एक चीज थी जो उन पर आ गई और वहाँ उन्हें दिखाई दी, उनके सामने जीभें, विभाजित जीभें। क्या यहाँ पर किसी ने कभी सेसिल डेमिल की 10 आज्ञाएं देखी है? क्या आपने ध्यान दिया जब आज्ञाएं लिखी जा रही थी? उसने इस बात को कैसे पकड़ा, मैं नहीं जानता। वहाँ इसमें मैंने दो या तीन चीजें देखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली चीज यह है कि मरकत रंग का प्रकाश, जो बिल्कुल ठीक उसी तरह से दिखता है, समझे? दूसरी चीज यह थी कि जब आज्ञा लिखी गई थी और इसके पूरा लिखे जाने के बाद, क्या आपने अग्नि के उस बड़े खंभे से उड़ते हुए ध्यान दिया? वहाँ आपकी छोटी छोटी जीभें उड़ रही थी, क्या आपने इसे ध्यान दिया? अब यही है जो मैं सोचता हूँ कि ऐसा पेंटिकॉस्ट के दिन पर था। वहाँ उन्हें दिखाई दिया तो वे इसे देख सकते थे। इसने ऐसा नहीं कहा यह वहाँ उनमें उतर आई, लेकिन उन्हें वहाँ जीभें दिखाई दी। हम इसे कहेंगे जुबाने, इस जुबान की तरह। यहाँ यह जुबान, जुबान के आकार में आग की जीभ। अब कान, जैसे मैंने कहा, कान कान है, उंगली उंगली है। उंगली का मतलब ये नहीं है कि आपने इसे महसूस किया, इसका मतलब ये उंगली की तरह दिखाई दिया। और यदि यह कान था तो इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने इसे सुना, ये कान की तरह दिखा। यह आग थी जो जुबान की तरह दिखाई दी, न ही कोई तो बोल रहा है, एक अग्नि जो जुबान की तरह दिखाई दी। अब सुनना, देखना कि यूनानी इसे यहाँ कैसे लिखते हैं। और अचानक से एक आवाज आई, एक तेज सनसनाती आंधी की तरह। तीसरा पद, और उन्हें विभाजित जीभें दिखाई दी। न ही विभाजित जुबाने उनके अंदर थी, या वे विभाजित जुबानों से बोल रहे थे, यह एक विभाजित जुबाने थी जो उन्हें दिखाई दी। अब देखना, यह अब भी उन पर नहीं है, यह वहाँ कमरे में है, जैसे इस हवा में हर कहीं गोल गोल घूम रही हूँ। उनके लिए जैसे अग्नि विभाजित जुबाने उन्हें दिखाई दी, यही उनके सामने है, जैसे आग, आग की तरह जुबाने। और एक एक वचन उनमें से हर एक पर आ ठहरी, उनके अंदर नहीं गई, लेकिन उन पर आ ठहरी। अब देखें कि किंग जेम्स संस्करण इसे किस तरह से बताता है। और उन पर फटी जीभें आ जाती हैं या आ ठहरती हैं। यह वहाँ किंग जेम्स में कैसे दिखाता है, उन पर आ बैठी, देखा। अब यह वहाँ ऊपर जाकर बैठ नहीं सकती, हम ये जानते हैं, लेकिन मूल में कहा गया यह उन पर आ ठहरी। मैं सोचता हूँ क्या ऐसा नहीं है, मुझे इसकी बिल्कुल ठीक सच्चाई को लाने दें। जी हाँ, उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी, एक अग्नि की जुबान उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। वहाँ देखा, आप इसे समझे, यह दूसरी चीज थी जिसने जगह ली। पहले वहाँ एक आंधी थी, उसके बाद आग की जुबानों का प्रकट होना। यह यहाँ इस छोटे से कमरे में थी जिसमें ये छोटे तेल के दिए जल रहे थे। उसके विषय में सोचें जो वहाँ बैठे हुए थे, और एक कहता है ओ, उसने पूरी इमारत की ओर देखा, यह पूरी तरह से सारी इमारत पर थी। तब उन्होंने कहा, देखो इमारत के चारों ओर आग की जुबानें आने लगती हैं। अब देखो, और वहाँ आग की ये जुबानें दिखाई दी। अब अगली चीज को देखें, और एक और जोड़, कुछ और भी घटित हुआ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए थे। दूसरी बात ने जगह ली। अब देखिए, हम ये कहते हुए इसे बदलना चाहते हैं, उनके पास अग्नि की जुबानें थी और यहाँ पूरे हकलाते हुए, और वे फिर बाहर निकल पड़े और एक अज्ञात भाषा से बोलना आरंभ किया। वहाँ वचनों में ऐसी कोई चीज नहीं है मित्रों, कोई भी जो पवित्र आत्मा को पाने पर अज्ञात भाषा से बोलता है वो बाइबल के विपरीत करता है। और मैं आपको कुछ ही मिनटों में दिखाने जा रहा हूँ और आपको साबित करूँगा कि मैं अज्ञात भाषा में बोलने में विश्वास करता हूँ, लेकिन ना ही पवित्र आत्मा को पाने पर। यह तो पवित्र आत्मा का दान है, पवित्र आत्मा एक आत्मा है। अब देखो, ये जुबाने कमरे में आग की नाई थी और ये हरेक पर बैठ गई, तब वे पवित्र आत्मा से भर गए। दूसरी चीज, और फिर उसके बाद जब वे पवित्र आत्मा से भर गए तो अन्य भाषाओं में बोले, जुबानों में नहीं, भाषाओं में बात की। क्या आपने इसे ध्यान दिया, उन्होंने अन्य भाषाओं से बोलना आरंभ किया जैसे जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने को दिया। अब यह आवाज बाहरी देशों की थी। अब देखो, अब उदाहरण को फिर से लेंगे जिससे कि आप इसे अब न भूल पाए। वचन के अनुसार ऊपर के कमरे में वे रुके हुए थे, अचानक एक तेज सनसनाती आंधी की तरह एक आवाज आई जो उन पर थी, यह पवित्र आत्मा था। कितने लोग यह विश्वास करते हैं कि यह पवित्र आत्मा का प्रकट होना था, एक आंधी की तरह, एक अलौकिक आंधी। तब उन्होंने ध्यान दिया और वहाँ पर छोटी छोटी आग की जीवे थी, उनमें से 120 पर, और उनमें से हरेक पर आकर रुक गई और उन पर हरेक आकर बैठ गई। यह क्या था, यह क्या था? आग का खंभा जो परमेश्वर अपने आप को उसके लोगों के बीच बांट रहा था, लोगों में आ रहा था। यीशु के पास संपूर्ण चीज थी, उसके पास बिना माप का आत्मा था। हमें ये माप में मिलता है। आपने देखा कि मेरा क्या मतलब है, क्योंकि हम लेपालकपन पाई हुई संतान हैं। उसका अनंत जीवन आ रहा था। अब क्या हुआ, तब वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अफवाह फैलना कब आरंभ हुई थी? यदि उन्हें उस ऊपरी कमरे से बाहर आना था जिससे कि उन सीढ़ियों से नीचे जाएं और राज मंदिर के आंगन में बाहर निकलना था, या बाहर मंदिर के आंगन में, जो कि शायद एक शहर का खंड था जहां पर वे लोग थे, सीढ़ियों के ऊपर और नीचे आते हुए वहां उस आंगन में जहां सब लोग इकट्ठे हुए थे, और वे वहां से मदिरा पिए हुए की नाई आत्मा में बाहर आए, क्योंकि लोगों ने कहा ये लोग पूरी तरह नई मदिरा पिए हुए हैं, उन्होंने कभी भी इस तरह से कुछ भी नहीं देखा था। और हरेक जन यह कहने की कोशिश कर रहा था, पवित्र आत्मा आ चुका है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा मुझ पर है, मैं आत्मा से भर गया हूँ। और वो गलीली होने के कारण जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा था, एक अरबी या फारसी ने उसे अपनी भाषा में बोलते सुना। हम कैसे सुनते हैं, अज्ञात भाषा में नहीं, उस भाषा में हम हरेक जन किस तरह से सुनते हैं जिस भाषा में हमारा जन्म हुआ था? क्या ये सब जो बोल रहे हैं गलीली नहीं है? और शायद गलीली बोल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इसे सुना तो यह उसी भाषा में था जिसमें उनका जन्म हुआ था। यदि ऐसा नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे पूछें, इस प्रश्न का उत्तर दें, ये किस तरह से था कि वहाँ पतरस खड़ा हो गया और गलीली में बोलने लगा और सारे झुंड ने सुना कि वो क्या कह रहा था। 3,000 प्राण ठीक वहीं पर मसीह के पास आ गए और पतरस एक ही भाषा में बोल रहा था। निश्चय ही यह परमेश्वर था जो अद्भुत कार्य को कर रहा था। पतरस उन्हीं श्रोतागणों से जो मेसोपोटामिया के रहने वाले थे और अजनबी लोग और धर्मांतरित लोग और सारे संसार भर से हर एक जन वहीं पर खड़े हुए थे और पतरस खड़ा हुआ और एक ही भाषा में प्रचार कर रहा था और हर एक जन ने उसको सुना, क्योंकि 3,000 लोगों ने पश्चाताप किया और तुरंत ही यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। ये किस तरह से है? देखो मित्रों, मैं अपने सांप्रदायिक पेंटिकॉस्टल भाइयों से ठीक अभी इसे स्वीकार करने की उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप बाइबल में से होते हुए इसे ढूंढें और मुझे कभी भी बता सकते हैं जहाँ उन्होंने कभी पवित्र आत्मा को पाया और एक ऐसी भाषा में बोले कि उन्होंने नहीं समझा हो कि वे क्या बोल रहे थे। और यदि इस तरह से उन्हें ये वहाँ पर मिला तो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर इसे हर समय उसी तरह से ही होना है। अब मैं नहीं, अब घर पर हमें याद होगा जब हम कल रात वहाँ सामरिया में गए थे, हमने पाया कि वहाँ उनके बारे में किसी और भाषा में सुनने के विषय में एक भी चीज नहीं बताई गई थी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। लेकिन जब वे कुरनेलियुस के घर में गए जहाँ पर लोगों की 3 भिन्न भिन्न राष्ट्रीयताएं थी, उन्होंने अन्य जुबानों में बोला और जब उन्होंने बोला, यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने इसे समझ लिया। पतरस ने कहा इसी तरह से उन्हें ये आरंभ में मिला था और वे जान गए कि अन्य जातियों ने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को उसी तरह से पाया था जैसे उन्होंने आरंभ में पाया था। मेरे पास यहाँ एक प्रश्न है, कुछ तो उसी बात पर कुछ ही मिनटों में मैं बुनियाद को रखना चाहता था जिससे कि आप देख सकेंगे कि यह क्या है। अब मैं ऐसे लोगों से आशा नहीं कर सकता हूँ जिन्हें अलग शिक्षा दी गई है, और मेरी बात को सुनना मेरे प्रिय बहुमूल्य पेंटिकॉस्टल भाइयों, मैं इस शिक्षा को बाहर नहीं देता हूँ। ये है, मैं विवाद पैदा करने के लिए कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन यदि हमें सत्य नहीं मिलता है तो हम शुरुआत कब करेंगे? हमारे पास कुछ तो होना है ताकि यहाँ पर वो जगह ले हमें समझाने के लिए। हमारे पास अब यहाँ रैप्चर के अनुग्रह को लेना है, सत्य को सामने आना ही होगा। एक मनुष्य क्या करेगा यदि वो बहरा और गूंगा था और बिल्कुल भी नहीं बोल सकता है? क्या वो पवित्र आत्मा पा सकता है? क्या वो यदि उसके पास आरंभ से ही कोई जबान न हो और वो बेचारा व्यक्ति बचना चाहता हो? समझे, यह पवित्र आत्मा है, यह एक बपतिस्मा है और फिर ये सारे दान, जैसे अन्य भाषा में बोलना, अन्य भाषा का अनुवाद करना, ये उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा आप जब देह के अंदर आते हैं उसके बाद आता है, क्योंकि वे दान मसीह की देह में होते हैं। अब मेरे इसे कहने का कारण, अब यहाँ देखना, क्या आप कैथोलिक कलीसिया से उम्मीद कर सकते हैं जो कि प्रेरितों के बाद संसार की पहली संगठित कलीसिया थी? तब कैथोलिक कलीसिया को संगठित किया गया था, ओह, अंतिम प्रेरित की मृत्यु के कई सौ वर्षों के बाद, कुल 600 और प्रेरितों के जाने के वर्षों बाद, नीसियन परिषद के ठीक बाद, जब नीसियन पिता एक साथ आ गए और संगठित हो गए, उसके बाद उन्होंने विश्वव्यापी कलीसिया को रखा जो कैथोलिक कलीसिया थी। वहाँ उन्होंने एक विश्व कलीसिया बनाई और कैथोलिक शब्द का अर्थ है विश्वव्यापी, यह हर जगह पर है। वे रोमन पागान या मूर्ति पूजक रोम पापल या पोप के रोम में बदल दिया गया और उन्होंने पतरस के स्थान पर प्रधान होने के लिए एक पोप को खड़ा किया जिसे उन्होंने सोचा और कहा कि यीशु ने उसे राज्य की चाबियां दी हैं और कहा वो पोप कभी गलती नहीं करता था। और आज भी कैथोलिक कलीसिया के लिए ऐसा ही है, वो उसके शब्द नियम और व्यवस्था है, वो अचूक पोप है जो आगे चलता गया। और फिर क्योंकि वे जो इस कैथोलिक मत सिद्धांत से सहमत नहीं होते, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता, फूटे पर जला देते और बाकी की हर एक चीज करते। हम जोसेफस की पवित्र लेखों और पॉस की शहीदों की किताब के जरिए से सभी ये जानते हैं और बहुत से अन्य पवित्र हिस्लॉप की दो बाबुल और वो महान इतिहास। और यह 1500 वर्षों के बाद, जैसा कि हम जानते हैं, अंधकार के युगों में बाइबल लोगों से ले ली गई थी और इसे एक छोटे भिक्षु या इत्यादि के द्वारा छुपाया गया था, हम समझते हैं। फिर उसके बाद पहला सुधारक आता है जो मार्टिन लूथर था, और उसने बाहर कदम रखा और कहा कि जिस प्रभु भोज को कैथोलिक ने देह कहा, वास्तविक मसीह की देह, यह केवल मसीह की देह का प्रतिनिधित्व करता है। और उसने प्रभु भोज को वेदी के कटघरे पर या सीढ़ियों पर फेंक दिया और उसे वास्तविक मसीह की देह कहने से इनकार कर दिया और प्रचार किया, धर्मी जन विश्वास से जिएगा। अब आप कैथोलिक कलीसिया से उम्मीद नहीं कर सकते कि उसके साथ सहमत होंगे, निश्चित रूप से नहीं, जब उनका गलती न करने वाला प्रधान उन्हें कहता है नहीं तो ठीक है। फिर मार्टिन लूथर के बाद, जो धर्मीकरण का प्रचार कर रहा था, जॉन वेस्ली पवित्रीकरण के प्रचार करने के साथ आता है और उसने प्रचार किया कि एक मनुष्य धर्मी ठहराए जाने के बाद ये ठीक है, लेकिन आपका पवित्रीकरण होना है, शुद्ध होना है, बुराई की जड़ को यीशु के लहू के द्वारा आप में से निकाल दिया जाता है। अब आप लूथरन लोगों से पवित्रता का प्रचार करने की अपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि वे ऐसा नहीं करेंगे। वेस्ली के द्वारा पवित्रीकरण का प्रचार करने के बाद और उसमें से बहुत से छोटे छोटे टुकड़े हो गए जो आते हैं, वेस्लियन मेथोडिस्ट और नाजरीन और इत्यादि, जिन्होंने अपने युग में से होते हुए आग को जलाए रखा। तब साथ ही पेंटिकॉस्ट ने आकर और कहा, क्योंकि पवित्र आत्मा ये बपतिस्मा है और जब ये हमें मिलता है हम अन्य जुबान में बोलते हैं, निश्चय ही। फिर साथ ही जब ये आता है तो आप अपेक्षा नहीं कर सकते नाजरीन और वेस्लियन मेथोडिस्ट और इत्यादि से कि इस बात का विश्वास करें, वे इसे नहीं करेंगे, वे इसे शैतान कहते हैं। तो ठीक है, क्या हुआ, वे गिरने लगे, पेंटिकॉस्टल ऊपर आने लगते हैं। अब ये एक स्थान पर ऊपर आ गए हैं, इतना तक पेंटिकॉस्ट के पास उसकी हिलावट आ गई, यह संगठित हो गई और बाहर निकल गई, उससे कुछ भी और अपेक्षा नहीं करते, उनके पास उनके खुद के नियम और कायदे हैं और इससे बात खत्म हो जाती है। अब जब पवित्र आत्मा अंदर आता है और किसी भी चीज के सत्य को प्रकट करता है और इसे उसकी खुद की उपस्थिति और उसके वचन के द्वारा साबित करता है, आप पेंटिकॉस्ट के लोगों से यह कहने की अपेक्षा नहीं कर सकते, मैं इससे सहमत हूँ। आपको अकेले खड़ा रहना होगा, जैसे लूथर खड़ा था, जैसे वेस्ली खड़ा था और जैसे बाकी के लोग खड़े थे, आपको उस पर खड़ा रहना होगा क्योंकि वो घड़ी यहाँ पर है और यही है जो मुझे एक बदसूरत बदक बना देता है, यही है जो मुझे अलग बनाता है। और मैं अपने बहुमूल्य भाई ओरल रॉबर्ट्स और टॉमी ऑसबोर्न, टॉमी हिक्स और उनकी तरह आरंभ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कलीसियाएं मुझसे सहमत नहीं होंगी। वे कहते हैं वो अनंत सुरक्षा में विश्वास करता है, वो एक बैप्टिस्ट है, वो पवित्र आत्मा के प्रारंभिक प्रमाण के नाई अन्य जुबान बोलने में विश्वास नहीं करता है, उस मनुष्य से दूर रहो, देखा। लेकिन इसके साथ आमने सामने आए, इसका सामना करें, वे लूथरन का सामना कर सकते हैं, वो मेथोडिस्ट कर सकते हैं, पेंटिकॉस्टल मेथोडिस्ट का सामना कर सकता है, मैं इसके साथ पेंटिकॉस्टल का सामना कर सकता हूँ, ये बिल्कुल सही है, ये सच है। ये ऐसा क्यों है, हम उजाले में चल रहे हैं जैसे वो उजाले में है, देखा, हम राजा के राजमार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और जितना आगे आता है उतना ही अनुग्रह दिया जाता है, अधिक सामर्थ्य दी जाती है, अधिक अलौकिक को दिया जाता है और हम वहीं पर हैं। यह वो घड़ी है जब पवित्र आत्मा उजाले के रूप में नीचे उतरा है, जैसे वो आरंभ में था एक अग्नि का खंभा, और उसने अपने आप को प्रकट किया है उन्हीं कामों को करते हुए जो उसने किए थे जब वो यहाँ धरती पर था। और यीशु ने कहा, तुम कैसे जानोगे कि वे सही हैं या नहीं, उनके फलों के द्वारा तुम उन्हें जान जाओगे। वो जो मुझ में विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, ये चिन्ह उनके पीछे पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। अब मेरे पेंटिकॉस्टल भाइयों, मैं आपके साथ हूँ, मैं आप में से एक हूँ, मुझे पवित्र आत्मा मिला है, मैंने अन्य भाषाओं में बोला है, लेकिन ये मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त करने पर नहीं मिला, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, मैंने अन्य भाषाओं में बोला है, भविष्यवाणी की है, मेरे पास ज्ञान के दान थे, बुद्धि, अनुवाद करना और सब कुछ हो रहा था, लेकिन मैं उनमें से किसी भी चीज के अधीन हूँ क्योंकि अब मैं परमेश्वर की संतान हूँ। वो सामर्थ परमेश्वर की अग्नि मेरे प्राण में है, वो आग की जीभ जो ठहर गई मेरे अंदर आकर बैठ गई और उस हरेक चीज को जला दिया जो परमेश्वर के विपरीत थी, और अब मैं उसकी आत्मा के चलाए चलता हूँ। वो कह सकता है यहाँ जाओ और मैं जाऊँगा, यहाँ जाओ मैं जाऊँगा, यहाँ बोलो मैं बोलूँगा, और ऐसा करो वैसा करो और इत्यादि। वहाँ आप होते हो बस जैसे आप आत्मा के चलाए चलते हैं। यही है जो परमेश्वर आप में है उसकी इच्छा पर काम करते हुए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है, वो उसकी इच्छा से काम करता है। अब सुनना, इससे पहले कि हम शब्दकोश पर प्रश्न को आरंभ करें, मैं यहाँ से पढ़ूंगा। अब वेटिकन अनुवाद से भाग 7 190 1205।
It is difficult to determine whether it was the voice of those
यह निश्चित करना कठिन है कि क्या यह उन लोगों की आवाज थी जो अनजान या प्राय भाषा में बोल रहे थे, या वो खबर या अफवाह जो अलौकिक सनसनाती हुई आंधी का मामला जिसने भीड़ को उत्तेजित कर दिया। वे इसे समझ नहीं पाए। अब देखो, चाहे ये लोग थे, मैं बस इसका चित्रण करूंगा। यहाँ पर गरीब फटे पुराने वस्त्र पहने गलीलियों का एक झुंड है, और यहाँ वे बाहर रास्ते में हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा। उनके हाथ ऊपर हवा में थे, उस ऊपरी कोठरी से आते हैं, उन सीढ़ियों से नीचे, वहाँ उसमें बाहर बस भरे हुए। उन्होंने अभी तक कभी भी नहीं बोला, देखा यहाँ पर वे वहाँ से नीचे आते हैं। और अब हम कहेंगे वे इसमें यहाँ वहाँ लड़खड़ा रहे थे, और लोगों ने कहा, एक यूनानी मेरे पास दौड़कर आता है और कहता है कि मैं गलीली में बोलता हूँ। तुम उसके पास दौड़कर जाते हो और कहते हो, और तुम्हारे साथ क्या मामला है लड़के? मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूँ, परमेश्वर की सामर्थ वहाँ उस कमरे में उतर आई, मुझे कुछ तो हुआ, ओह परमेश्वर की महिमा हो। और एक और यहाँ पर है, वो एक अरबी से बातें कर रहा है, और वो एक गलीली अरबी भाषा बोल रहा था। अब वे नहीं बता सकते कि क्या ये सनसनाती हुई आंधी थी जिसने लोगों को एक साथ खींचा जब भीड़ इकट्ठी हुई, या क्या वे भिन्न भाषा में बोल रहे थे जो वे बोल रहे थे। अब बाइबल बिल्कुल नहीं, आपके पास दो चीजें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ये थी उस बाहरी व्यक्ति ने कहा, यह किस तरह से है कि हम हर एक मनुष्य को अपनी ही जुबान में सुन रहे हैं जिसमें हमने जन्म लिया था। इसने ये नहीं कहा कि वे उस भाषा में बोल रहे थे, लेकिन वे इसे सुन रहे थे। फिर वही झुंड, वही लोग इसे समझाते हैं। पत्रस किसी बात पर उछल पड़ा और कहा, हे गलील के लोगों, और तुम जो यरूशलेम में रहते हो, इस बात को तुम जान लो। लोगों ने कहा कि उनकी भाषा गलीली नहीं है। इस बात को तुम जान लो और मेरे शब्दों पर ध्यान दो। वो कौन सी भाषा में उन सबसे बात कर रहा था? क्योंकि ये नशे में नहीं है जैसा कि तुम समझते हो। देखते हुए यह दिन का तीसरा पहर है, लेकिन यह वो है जिसके विषय में योएल भविष्यवक्ता के द्वारा बोला गया, और अंत के दिनों में ऐसा होगा। परमेश्वर यो कहता है, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। वो आगे और आगे बोलता गया और कहा, तुमने दुष्ट हाथों से परमेश्वर के निर्दोष पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया है। दाऊद ने उसके बारे में बोला था, उसके प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, नहीं वो उसके पवित्र जन को सड़ने देगा। और कहा, तुम्हें इस बात का ज्ञात हो कि परमेश्वर ने उसी यीशु को बनाया जिसे तुमने प्रभु और मसीह दोनों को क्रूस पर चढ़ाया। और जब उन्होंने इसे सुना, आमीन, किसने? आकाश के नीचे हर एक मनुष्य ने। क्या बात जगह ले रही थी! वो ये नहीं कह रहा था, अब मैं गलीली में बोलूंगा, मैं इस भाषा में बोलूंगा, मैं इसमें बोलूंगा। जब पतरस ने इन शब्दों को बोला, तब उन्होंने कहा, पुरुषों और भाइयों, हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं? और पतरस ने उन्हें विधि को दिया। इसी तरह से हमेशा ही होता है। देखा, यह ऊपर बढ़ रहा है, परमेश्वर के अंदर जोर देते हुए निकट जाते। आप कैसे जानते हैं? अब जब लूथर ने धर्मीकरण को ग्रहण किया तो उसने उसे पवित्र आत्मा कहकर बुलाया। ये था परमेश्वर, इसमें थोड़े से अंश में था। फिर उसने क्या कहा? वेस्ली ने पवित्रीकरण को ग्रहण किया और कहा, लड़के जब तुम चिल्लाते हो तो तुम्हें यह मिल गया है, लेकिन उसमें से बहुतों ने चिल्लाया जिनके पास यह नहीं था। जब पेंटिकॉस ने अन्य जुबानों में बोला, अज्ञात भाषाएं, उन्होंने कहा, लड़के तुम्हें यह मिल गया है, लेकिन उनमें से बहुतों के पास यह नहीं था। वहाँ ना ऐसी कोई चीजें हैं जैसे उसे जानने के वे चिन्ह हो। तुम केवल एक ही जरिए से पेड़ को जानते हो। यीशु ने कहा, जो फल इसमें लगते हैं उसी के द्वारा, जो आत्मा के कार्य हैं, आत्मा का फल। फिर जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो सामर्थ्य से भरा हुआ है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तब आप एक ऐसे जीवन को देखते हैं जो बदला हुआ है। आप उन्हीं चिन्हों को उनके पीछे जाते हुए देखते हैं जो विश्वास करते हैं। मेरे नाम में वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। यदि कोई सांप उन्हें काट ले तो इससे उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। यदि वे एक घातक वस्तु भी पी जाते हैं तो यह उन्हें नहीं मारेगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ओह, इस तरह के चिन्ह उनके पीछे पीछे जाते हैं जो विश्वास करते हैं। लेकिन आप इसमें कैसे आते हैं? वे दान उस देह में होते हैं। आप उस देह में कैसे आते हैं? न ही आपके तरीके से बोलने के द्वारा, लेकिन एक देह में बपतिस्मा लेने के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 12:13, एक आत्मा में हम सभी ने उस देह में बपतिस्मा लिया है और सभी दानों के अधीन। प्रभु आपको आशीष दे। अब यदि कोई भी इस टेप को सुनता है या यहाँ कोई असहमत होता है, याद रखें, इसे मित्रता पूर्व से करें भाइयों, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आज रात का पहला प्रश्न, भाई ब्रैनम, मैं सोचता हूँ कि टेलीविजन संसार के लिए एक शाप है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? तो जिसने भी इसे लिखा है, मैं आपके साथ सहमत होऊंगा। उन्होंने इसे संसार के लिए एक शाप बना दिया है। ये संसार के लिए आशीष हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसे एक शाप बना दिया है। ऐसी कोई भी चीज, मेरे प्रिय लोगों, ये जो आप अपने स्वयं की ओर देखते हैं। यदि टेलीविजन एक शाप है, तो अखबार एक शाप है, फिर रेडियो एक शाप है, और बहुत सी बार टेलीफोन शाप है। देखो देखो देखो, समझे? यही है जो आप इसमें से उत्पन्न करते हैं। लेकिन उस भाई ने एक रात को कहा कि वहाँ टेलीविजन पर अब शायद ही कोई कार्यक्रम हो। यह बहुत अधिक पैसा लेते हैं। एक गरीब प्रचारक जो संपूर्ण सुसमाचार का प्रचार करता है, वो टेलीविजन पर एक कार्यक्रम का खर्च नहीं उठा सकता है। तो इसलिए उस रात भाई ने कहा, मैं सोचता हूँ, कहीं तो कहा, अपने रेडियो पर पड़ी धूल को साफ करें, या किसी ने तो कहा, या इसे कोने में से वापस बाहर निकालें और उन कार्यक्रम को सुने। ये सही है। लेकिन प्रिय व्यक्ति, आप जो भी हैं, मैं निश्चित रूप से आपसे सहमत हूँ, यह मनुष्य जाति के लिए सबसे हानिकारक चीजों में से एक बन गई है। वहाँ वे यह सब यहाँ पर पैसे लेते हैं, जो पैसा सरकार के पास टैक्स या करों के लिए जाता है, और इसे इन सारे सिगरेट और विस्की कार्यक्रमों और इस तरह की चीजों के विज्ञापन में इसके ध्यान बांट देते हैं, और इसे सरकार के करों या टैक्स के खाते में डाल देते हैं। और फिर वे वहाँ पर आते हैं और प्रचारकों को पकड़ते हैं और उन्हें अदालत में घसीटते हैं, जिससे कि उनमें से थोड़ा सा पैसा निकाल सके। मैं आपसे सहमत हूँ, यह एक भयानक बात है। अब यह नहीं, आप जानते हैं, यह बस कुछ ऐसी चीज है जो आप पाते हैं। धन्यवाद बहनों, भाइयों, आप जो कोई भी हैं जिसने इसे पूछा था। अब यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न, बाइबल में ऐसे स्थान हैं जहाँ पहला शमूएल 18:10 जो कहता है कि परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा ने कामों को किया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, परमेश्वर से दुष्ट आत्मा, कृपया इसे समझाएं। तो ठीक है, हो सकता है प्रभु की सहायता के द्वारा मैं समझा सकता हूँ। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर एक बुरी आत्मा है, लेकिन हर एक चीज की, हर एक आत्मा परमेश्वर के अधीन होती है, और वो जो चाहता है उसके अनुसार हर एक चीज को वो काम करने को लगाता है, समझे? अब आपके प्रश्न पर, आप उस दुष्ट आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं जो शाउल को पीड़ा देने के लिए परमेश्वर के पास से निकली थी। वो उदासी में था, टूटी हुई स्थिति में था, क्योंकि पहले ही वो पीछे हटा हुआ था। और जब आप पीछे हटे हुए होते हैं, तो एक दुष्ट आत्मा, परमेश्वर एक दुष्ट आत्मा को अनुमति देगा ताकि आपको कष्ट दे। मैं आपके लिए थोड़ी देर में कुछ पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक और विचार है, समझे? हर एक आत्मा को परमेश्वर के अधीन होना है। क्या आपको याद है जब यहोशापात और अहाब युद्ध करने जा रहे थे, और पहली बात जो आप जानते हैं, वहाँ एक वे फाटकों में तैयार हो गए थे और यहोशापात एक धर्मी व्यक्ति था और उसने कहा दोनों राजा वहाँ तैयार हैं और उन्होंने उनकी सेना को एक साथ एकत्र किया और सो उसने कहा आओ हम प्रभु से परामर्श लें कि हम बाहर जाएं या नहीं। और अहाब ने जाकर और 400 भविष्यवक्ताओं को ले आया जो सारे उसके पास थे और उनको खिलाता रहा और परिपुष्ट किया और हर एक चीज को किया। वे अच्छी दशा में थे और वे वहाँ पर आए और सभी ने एक मन होकर भविष्यवाणी की, कहा आगे जाओ और परमेश्वर तुम्हें विजय देगा। वहाँ गिलाद के रामोत पर जाओ और वहाँ परमेश्वर उस चीज को तुम्हारे लिए ले लेगा। उनमें से एक ने अपने आप के लिए सिंगों का जोड़ा बनाया और चित्रण के रूप में इधर उधर दौड़ने लगा, कहा इन लोहे के सिंगों से तुम उन्हें देश से बाहर धकेल दोगे जो तुम्हारा है। लेकिन आप जानते हैं वहाँ परमेश्वर के एक मनुष्य के विषय में कुछ तो बात है जो उस सब के साथ नहीं जाता है। देखा, यदि ये वचन के साथ सही नहीं बैठता है तो वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कोई भी सच्चा विश्वासी। तब यहोशापात ने कहा तो ठीक है, वे 400 नबी सही दिखाई देते हैं, वे भले मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं। ओह वे हैं, हो सकता है, आप ने कहा। लेकिन यहोशापात ने कहा क्या तुम्हारे पास एक और नहीं है? एक और क्यों, जबकि तुम्हारे पास एक मन के साथ 400 हैं? क्योंकि वो जानता था कि कुछ तो ऐसा था जो ठीक नहीं लग रहा था, समझे। उसने कहा जी हाँ, हमारे पास एक और है, इमला का पुत्र यहाँ ऊपर, कहा लेकिन मैं उससे घृणा करता हूँ। निश्चय ही आप उसकी कलीसिया को किसी भी समय बंद कर देंगे, जब भी आप कर सकते हैं आप उसे देश से बाहर कर देंगे। देखा, निश्चय ही मुझे उससे घृणा है। तुम उससे क्यों घृणा करते हो? वो हमेशा ही मेरे विरुद्ध बुरी भविष्यवाणी करता है। मैं सोचता हूँ कि यहोशापात ठीक तभी जानता था, वहाँ कुछ तो सही नहीं था। तो उसने कहा ऊपर जाकर और मिकाया को ले आओ। तो वे उसे लेने ऊपर चले गए और वो यहाँ नीचे आता है। सो जब वे ऊपर गए तो उन्होंने एक संदेशवाहक को भेजकर कहा अब एक मिनट रुकना। अब उनके पास वहाँ नीचे धर्म ज्ञान के 400 विद्वान हैं। वे देश में PH, LLD और हर एक चीज में सबसे उत्तम हैं। कहा अब आप जानते हैं, तुम जो तुच्छ छोटे अनपढ़ मनुष्य हो, तुम उन सारे याजक गण से असहमत नहीं होंगे। इमला ने यह कहा, या मेरा मतलब है मिकाया ने यह कहा, मैं तब तक कुछ भी नहीं कहूँगा जब तक कि परमेश्वर इसे मेरे मुंह में न डाल दे, और तब मैं ठीक वही कहूँगा जो परमेश्वर कहता है। मैं इसे पसंद करता हूँ। दूसरे शब्दों में मैं वचन के साथ बना रहूँगा, बाकी लोगों ने क्या कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा तो ठीक है, कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें बाहर नहीं फेंका जाए तो बेहतर होगा कि तुम उसी बात को कहो। सो वो वहाँ नीचे गया और उसने कहा क्या मैं ऊपर जाऊँ? उसने कहा आगे बढ़ो, कहा मुझे आज रात का समय दो, मुझे इस पर प्रभु के साथ बात करने दो, मैं इसे पसंद करता हूँ। सो उस रात प्रभु उसके सामने उपस्थित हुआ और दूसरे दिन वो वहाँ ऊपर जाता है और उसने कहा जब वो ऊपर जा रहा था उसने बोला आगे बढ़ो, पर मैंने इसराइल को उन भेड़ों की नहीं देखा जिनका कोई चरवाह नहीं है, वे सब पहाड़ियों पर बिखरी हुई थी। ओ प्रभु कि वो आंधी उसमें से बाहर आने दो। और उसने कहा क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैं इसे जानता था, बिल्कुल ठीक इसी तरह से वह हर समय करता है, मेरे विरुद्ध कुछ तो बुरा कहता है। क्यों? वो वचन के साथ बना हुआ था। क्यों? उसके सामने एक भविष्यवक्ता परमेश्वर का वचन एलिया की ओर से आ रहा था, सच्चा भविष्यवक्ता। उसने बोला क्योंकि तूने निर्दोष नाबोत का लहू बहाया है, कुत्ते भी तेरा खून चाटेंगे। और उसने उसे बुरा बताया। एलिशा स्वर्ग चला गया था, लेकिन वो जानता था कि एलिशा के पास परमेश्वर का वचन था, इसलिए वो वचन के साथ बना रहा। मैं इसे पसंद करता हूँ, वचन के साथ बने रहें। यदि बाइबल ने कहा यीशु मसीह को कल आज और युगानुयुग एक सा है, उसकी सामर्थ अब भी वही है, पवित्र आत्मा जो कोई भी चाहे उसके लिए है, उसे आने दो, वचन के साथ बने रहो। जी हाँ श्रीमान, कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी के लोग क्या कहते हैं, कितना अच्छा सिखाया गया और वे कितने स्कूलों में से होकर आए हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर उसने कहा यह बड़ा विशाल व्यक्ति जिसके सिर के ऊपर सींग है इसे बाहर निकालने जा रहा है, देश से बाहर, राजा से दूर। वो ऊपर चला गया और उसके मुंह में जोर से मारा इस छोटे से प्रचारक को। वो जानता था कि वो बस एक छोटा सा पवित्र शोर शराबा करने वाला था, इसलिए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जाएगा। तो उसने बस उसके मुंह में जोर से मार दिया। उसने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा, परमेश्वर का आत्मा किस ओर चला गया जब वह मुझमें से निकल गया? क्या तुमने इसे पाया है? उसने कहा, तुम समझ जाओगे जब तुम वहाँ पिंजरे में उस ओर एक बंधुए की नाई बैठे रहोगे। उसने कहा, मैंने परमेश्वर को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। आमीन। अब सुनना, और स्वर्ग की सेना उसके चारों ओर इकट्ठा हुई थी। मामला क्या था? उसके नबी ने पहले ही बता दिया था कि अहाब के साथ क्या होने वाला है। परमेश्वर या एलिया ने ऐसा नहीं कहा था, यह तो अभिषिक्त नबी था, यह प्रभु का वचन था। यहोवा यो कहता है। और मिकाया ने कहा, मैंने एक बड़े सभा में स्वर्ग के सारे समूह को परमेश्वर के चारों ओर इकट्ठा होते देखा, और वे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। और प्रभु ने कहा, हम किसे लें कि वहाँ नीचे जा सके? तुम में से कौन एक नीचे जाकर अहाब को भरमा सकता है कि वहाँ उसे ले सके ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो? उसे मारने के लिए हमें वहाँ नीचे जाने के लिए किसे ले सकता है? तो यह एक कह रहा था, यह एक या वो एक है। और थोड़ी देर के बाद एक दुष्ट आत्मा, एक झूठ बोलने वाली आत्मा नीचे से ऊपर आई और कहा, यदि आप मुझे अनुमति दोगे, मैं एक झूठ बोलने वाली आत्मा हूँ, मैं नीचे जाकर और उन सारे प्रचारकों को ले लूंगा, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, और मैं उन्हें बनाऊंगा, वे बस स्कूल में प्रशिक्षित लड़के ही हैं, और मैं नीचे जाकर उनमें से हर एक को ले लूंगा और उन्हें भरमाऊंगा और उनसे एक झूठी भविष्यवाणी करवाऊंगा। क्या उसने इसे कहा? और उसने कहा, हम इसी तरह से भरमाएंगे। तो वो नीचे चला गया। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ, और वो नीचे गया और उन झूठे भविष्यवक्ताओं, स्कूल प्रशिक्षित सेवकाई के अंदर चला गया और उनसे झूठी भविष्यवाणी करने को लगाया। यह एक झूठ बोलने वाली आत्मा थी जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम कर रही थी। मुझे अब कुछ और भी है जो आप यहाँ देख सकते हैं। बस एक मिनट, इसे देखो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पहला कुरिन्थियों के 5वें अध्याय को खोलें, पहला पद। बस एक मिनट, पहला कुरिन्थियों। और यदि आप कुछ देखना चाहते हैं तो इसे देखें। परमेश्वर कुछ तो बना रहा है, किस तरह से वे बुरी आत्माएं किस तरह से वे आगे बढ़ेंगी। तो ठीक है, पौलुस बोल रहा है, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम्हारे बीच में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो ये अन्य जातियों के बीच में भी नहीं होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कलीसिया के बीच, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है और तुम फूले हुए हो और ना ही? आइए देखते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैंने दो पन्नों को पलट दिया है। तुम जो और तुम फूले हुए हो और ना ही शोक करते हो जो कि अब यहाँ एक मिनट रुकना क्या मैं हाँ यह सही है हाँ शोक नहीं करते ऐसा ही है फूले हुए हो और ना ही शोक करते हो जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता। मुझे नहीं पता, मैं नहीं सोचता कि कोई भी इस पर कहेगा या पीछे हटेगा, लेकिन मैं केवल उसी का बचाव कर रहा हूँ जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति एक बार आत्मा से भर जाता है तो वो इसे खो नहीं सकता। देखा, समझे? क्योंकि मैं शरीर के भाव से तो दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर पहले ही न्याय हो चुका है, मानो उपस्थिति की दशा में उसके विषय में जिसने ऐसा काम किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब तुम एक साथ एकत्र हुए हो और मेरी आत्मा प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ कि शरीर के विनाश के लिए शैतान को उस एक को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में बचाया जाए। परमेश्वर पवित्र कलीसिया को बता रहा है जो धरती पर उसका शरीर है कि अब यह पुराने नियम के बाद है नए नियम में। एक मनुष्य को बताना जो लोगों के बीच बहुत ही गंदा और मलिन था कि वह अपने पिता की पत्नी के साथ रहता था। कहा, मसीह की देह में ऐसी बात तुम कलीसिया उसे नाश के लिए शैतान के हवाले कर दो। देखा, परमेश्वर अनुमति देता है और जब उसे कुछ तो मिलता है तो उसे करते हुए देखना है। किसी पर चाबुक को लगाने के लिए वो उन पर एक दुष्ट आत्मा को छोड़ देगा, जिससे कि वे उस व्यक्ति को कष्ट दें और उन्हें वापस लेकर आए। अब बाद में हम इस मनुष्य को पाते हैं। यही है जो आज कलीसियाओं के साथ मामला है। जब कोई मनुष्य मसीह की देह के अंदर आता है और सदस्यों में से एक बन जाता है और बुराई करना आरंभ करता है, बजाय इसके आप सब एक साथ इकट्ठा होकर और इसी काम को करते हो। और तुम ब्रैनम टैबरनेकल इसे करो, क्योंकि जब तक तुम उसे संभाले हुए होते हो वो लहू के नीचे होता है और वो बस उसी पुराने काम को हर समय बार बार और बार बार और बार बार करता रहता है। तुम एक साथ मिलकर और उसे देह के नाश के लिए शैतान के हवाले कर दो कि उसकी आत्मा जैसे हो सकता है प्रभु के दिन में बचाई जाए। और देखो, परमेश्वर का चाबुक आता है। देखो, शैतान उसे पकड़ के रखता है। यही एक बुरी आत्मा उसे पकड़ने लगती है और यह लड़का सीधा हो जाता है, वह वापस आ जाता है। हम दूसरे कुरिन्थियों में देखते हैं जहां वो वास्तव में परमेश्वर के सामने साफ किया। अय्यूब की ओर देखो, एक सिद्ध मनुष्य, एक धर्मी मनुष्य, और परमेश्वर ने दुष्ट शैतान को उस पर आने की अनुमति दी और उसकी ताड़ना की, उसकी आत्मा को सिद्ध करने के लिए बाकी की हर एक चीज को किया। देखा, सो बुरी आत्माएं परमेश्वर अपनी योजना और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत बार दुष्ट आत्माओं का उपयोग करता है। अब यहाँ एक है जो असल में एक साथ ही लगा हुआ है। प्रश्न, मैं सोचता हूँ कि यह वही व्यक्ति है क्योंकि इसकी लिखावट एक जैसी दिखती है। यदि किसी व्यक्ति के पास अवश्य ही पवित्र आत्मा होना है परिवर्तित होने के लिए और रैप्चर में जाने के लिए, तो उन बच्चों की दशा क्या होगी जो उत्तरदायित्व होने की उम्र से पहले ही मर जाते हैं, और वे कब ऊपर आएंगे? अब मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको यह नहीं बता सकता। बाइबल में इस पर कोई वचन नहीं है जैसा कि मैं कहीं भी पा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने विचार को व्यक्त कर सकता हूँ। अब ये आपको मजबूत करेगा जो परमेश्वर के अनुग्रह में विश्वास करते हैं। आप देखिए, वो व्यक्ति जानना चाहता है, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, समझे? वो व्यक्ति जानना चाहता है कि कौन सा पुनरुत्थान, उस बालक का क्या होगा कि यदि रैप्चर में जाने के लिए उसके पास पवित्र आत्मा होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है, यह सही बात है, यह बाइबल के अनुसार है, यही वचन की शिक्षा है। न ही स्वर्ग में जाने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग पहला पुनरुत्थान है चुने हुए, और वे बचे हुए शेष मरे हुए 1000 वर्ष तक जीवित नहीं रहते। सहशताब्दी के बाद उसके बाद दूसरा पुनरुत्थान होता है, बड़े सफेद सिंहासन का न्याय। देखा, ठीक यही बाइबल का क्रम है। लेकिन यह व्यक्ति जानना चाहता है कि इन बच्चों के बारे में क्या है। वे दूसरे शब्दों में, क्या उनके जन्म से पहले उनके पास पवित्र आत्मा था, क्या उन्होंने इसे पाया? अब यह मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। आइए हम इसे इस तरह से कहें, हम जानते हैं कि जो बच्चे मर जाते हैं उनके माता पिता के बावजूद वे बच जाते हैं। अब मैं इस बात पर भविष्यवक्ताओं के स्कूल से असहमत हूँ। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है, वो एक ऐसे माता पिता के साथ मर जाता है जो पापी थे, वो बालक नरक में जाएगा, सड़ जाएगा, इसमें अब उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो ठीक है, यीशु, जब यीशु आया तो यूहन्ना ने कहा, परमेश्वर के मेमने की ओर देखो जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। और यदि वह बालक मनुष्य जाति था जिसे परमेश्वर के न्याय के नीचे आना होगा, और यीशु पाप को दूर करने के लिए मरा, सारे पाप परमेश्वर के सामने से निकाल दिए गए जब यीशु उस उद्देश्य के लिए मरा था। आपके पाप क्षमा हुए थे, मेरे पाप क्षमा हुए थे, और केवल एक ही जरिया है आपको कभी भी क्षमा किया जा सकता है, वो है उसकी क्षमा को स्वीकार करना। अब वो बालक उसकी क्षमा को स्वीकार नहीं कर सकता है, इसलिए कि उसने कुछ भी नहीं किया है, इसने बिल्कुल कुछ भी किया ही नहीं है, इसलिए ये स्वर्ग जाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। लेकिन आप कहेंगे, क्या वे रैप्चर भी जाएंगे? अब ये मेरे अपने शब्द हैं, यह अब मेरा विचार है, ना मैं इसे बाइबल से साबित नहीं कर सकता हूँ। लेकिन देखो, यदि परमेश्वर दुनिया की नींव डालने से पहले कि हर मनुष्य जो कभी धरती पर होगा वो उसे जानता था, क्या आप ये विश्वास करते हैं? वो हर एक मच्छर, हर एक पिस्सू, हर एक मक्खी को जानता था। वह सब कुछ जानता था जो कभी भी धरती पर होगा। यदि वो जानता था कि देखो, आइए उदाहरण के लिए मूसा को लें। जब मूसा का जन्म हुआ था वो एक भविष्यवक्ता था। यर्मिया से पहले परमेश्वर ने यर्मिया से कहा, इससे पहले तू अपनी माँ के गर्भ में रचा जाता, उसके गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता था और पवित्र किया और जाति जाति के लिए तुझे भविष्यवक्ता ठहराया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके जन्म के 712 वर्ष पहले यशाया ने उसे एक दर्शन में देखा था, कहा वो जंगल में पुकारने वाले की एक आवाज है। परमेश्वर का पहले से ठहराया जाना या पूर्व ज्ञान छोटे बच्चों के बारे में सब कुछ जानता है। देखा उन्हें क्या करना था और वो जानता था कि वे मरेंगे। वो जानता था परमेश्वर के इसके बारे में जाने बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। बस अच्छे चरवाहे की तरह वो कैसे अंदर जाता है। अब वचन के द्वारा इसे लेने के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि वचन ऐसा और ऐसा कहता है। मैं इसे केवल अपने विचार के लिए ले रहा हूँ। अब अगला प्रश्न, एक जो मैं सोचता हूँ कि हो सकता है कोई तो वही था जो मैंने एक रात को बताया था, समझाएं कि पत्नी एक बालक को जन्ने के द्वारा बचाई जाएगी। पत्नी एक बालक को जन्ने के द्वारा नहीं बचती है। लेकिन आइए अब हम पहला तिमुथियुस 2:8 की ओर जाएं, बस एक मिनट, और आइए देखेंगे कि बालक के बारे में बाइबल क्या कहती है। अब मैं समझता हूँ कि ये एक कैथोलिक सिद्धांत है कि कैथोलिक कहते हैं कि स्त्री बालक को जन्म देने में बच जाती है, बालक को जन्म देने के द्वारा। लेकिन आइए, ना ही मैं इसे विश्वास नहीं करता। पहला तिमुथियुस 2 अध्याय, और आइए 8वें पद से आरंभ करें और अब एक क्षण पढ़ेंगे। तो ठीक है सुनना, वैसे ही स्त्रियां भी सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सवारे। हमें यह नहीं पूछना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए? इसको सुनना, लज्जा संकोच के साथ और संयम, ना ही उसके बाल गूंधने से या सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से। भाइयों, मुझे आशा है मैं यहाँ आपकी सहायता कर रहा हूँ। ये सारी नई नई स्त्रियों के पहनने वाली टोपियाँ हर दिन या 3 दिन आपने देखा, यह मसीह नहीं बनाता है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है, पर भले कामों से तुम्हारी स्त्रियों को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले और उसके बाद हवा बनाई गई। आदम बहकाया न गया, लेकिन स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। ऐसा होते हुए भी वो बालक को जन्ने के द्वारा बचाई जाएगी। यदि अब वो संसार की स्त्री से बात नहीं कर रहा है, बच्चों को जन्म देना, यदि वो विश्वास में स्थिर बनी रहती है। देखा, यदि वो स्थिर बनी रहती है, वह पहले से ही, यही वो स्त्री है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। वो स्त्री यही है जो बचाई जा चुकी है। देखा, और संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में, ना ही बच्चों के होने से वो बचती है, लेकिन इसलिए कि वो बच्चों की परवरिश कर रही है, अपना कर्तव्य निभा रही है। ना ही बच्चों की जगह वो बिल्लियों, कुत्तों और जो भी है उन्हें पाल पोस रही हो, जैसा कि वे आज करते हैं। इन्हें माँ का प्यार देती हैं, जिससे कि वो बाहर जा सकें और पूरी रात यहाँ वहाँ घूम सकें। कुछ लोग ऐसा करते हैं, क्षमा करें, लेकिन वे ऐसा करते हैं। मेरे लिए यह कहना बहुत ही भद्दा है, लेकिन सच तो सच है। देखा, वे नहीं चाहते कि कोई बच्चा उनके साथ बंधा हुआ हो। लेकिन जन्म देने में यदि वो विश्वास, पवित्रता और सारे संयम में स्थिर बनी रहती है, तो वो बचाई जाएगी। लेकिन यदि है, तो आप भी बच जाएंगे। यदि आप फिर से जन्म पाए हुए हैं, आप चंगे हो सकते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं, आप पवित्र आत्मा को पा सकते हैं, यदि आप इसे विश्वास करें, इसके लिए तैयार हो जाएं। यदि आप इसके लिए तैयार हैं, और वो बच जाएगी यदि वो इन कामों को करती रहे, देखा, लेकिन इसलिए नहीं कि वो एक स्त्री है। तो ये सही है भाइयों बहनों, यह बिल्कुल भी कैथोलिक की शिक्षा नहीं है। अब मैं चाहता हूँ, यहाँ एक और है जो कि एक बहुत ही कठिन है, फिर हमारे पास एक और है। मैं सोचता हूँ कि शायद हमारे पास इसके लिए समय है, मैंने अभी अपना समय लिया। अब यह तो बस बेदारी की बात का असर है, यह सभा की बात का असर है, ये प्रश्न। अब भाई ब्रैनम, यह टाइप किया हुआ है, क्या एक व्यक्ति के लिए अन्य भाषा में बोलना और अपने खुद के संदेश का अनुवाद करना ऐसा वचन में है? यदि ऐसा है तो कृपया समझाएं। पहला कुरिन्थियों या कुरिन्थियों 14:19 और कुरिन्थियों 14:27 भी। तो ठीक है, आइए हम उस वचन की ओर जाएंगे और देखें कि यह क्या कहता है, और फिर हम देखेंगे कि क्या हम इस वचन के अनुसार रख पाते हैं। हम हमेशा ही वचन के अनुसार बने रहना चाहते हैं। और कुरिन्थियों 14, अब ये व्यक्ति जानना चाहता है क्या ये वचन के अनुसार है एक मनुष्य के लिए कि उसके खुद के संदेश का अनुवाद करे जो उसने अन्य जुबान में बोला है। यदि ऐसा है तो कुरिन्थियों 14:19 को समझाएं। आइए देखें 14:19। तो ठीक है, हम यहाँ हैं। परंतु कलीसियाओं में मैं, बल्कि यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं, अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से। अब अगला 27वां पद है, वे जानना चाहते हैं यदि कोई मनुष्य अन्य भाषा में बातें करता है तो ऐसा करे कि 2 या तो बहुत हो तो 3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। अब मैं उसे लेता हूँ जो व्यक्ति जानने की कोशिश कर रहा है, जिसे मैं चाहता हूँ, मैं आपके लिए थोड़े समय के लिए कुछ पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि भाई या बहन इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एक व्यक्ति के लिए जो अन्य भाषा में बोल रहा है उसी के द्वारा कहे गए संदेश का अनुवाद करना सही है? अब प्रिय प्यारे मित्र, यदि आप उसी अध्याय के 13वें पद को पढ़ेंगे तो ये आपको बताएगा, इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वो प्रार्थना करे कि वो उसका अनुवाद भी कर सके। निश्चय ही वो अपने खुद के संदेश का अनुवाद कर सकता है। अब यदि हम सिर्फ, आइए बस, अच्छा, आप इसे यहाँ से सारा पढ़ें और आप देख सकते हैं, ये बस इस पूरे अध्याय को पढ़ें, ये बहुत अच्छा है, इसे समझाता है। अब अन्य जुबान में बोलना, अब जबकि हम उस पर हैं और इसे टेप किया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अन्य भाषाओं में बोलने में उतना ही विश्वास करता हूँ जितना कि मैं दैविक चंगाई में विश्वास करता हूँ, और उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में, मसीह के दूसरे आगमन में और आने वाले संसार की सामर्थ, मैं उस पर उतना ही विश्वास करता हूँ जितना मैं इसे विश्वास करता हूँ। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि अन्य जुबानों में बोलने का अपना स्थान है, बिल्कुल वैसे ही मसीह के आगमन का अपना स्थान है, दैविक चंगाई का अपना स्थान है, हर एक चीज अपनी जगह पर है। अब आप लोगों के लिए, मुझे अब इसे कहने का मौका मिला है और मैं इसे समझाना चाहता हूँ, और यदि मैं किसी को ठेस पहुँचाता हूँ तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब गड़बड़ी पैदा करना नहीं है। लेकिन सुनना, पेंटिकॉस्टल लोगों के द्वारा अज्ञात भाषा में बोलने से क्या बात रही है? जो मैं खुद हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, समझे? अब इसकी परेशानी क्या रही है कि वे इसका आदर नहीं करते हैं, और एक और बात, वे इसे बिना व्यवस्था के होने देते हैं, वे वचन पर वापस नहीं आते हैं। अब सुनना, यहाँ ये तरीका है होने का, यहाँ वो तरीका है जिसमें कलीसिया को रखा गया है। अब एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया में, यदि मैं इस कलीसिया में पास्टर का काम कर रहा होता तो मैं आपको बताता कि मैं इसे किस तरह से व्यवस्थित करता। देखा, यदि मैं हर समय इसका पास्टर होने के लिए यहाँ पर होता, मैं बाइबल में हर एक दान का समर्थन करता, विश्वासियों को पहले पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने के लिए कहता, और फिर पहला कुरिन्थियों 12 के हर एक दान को मेरी कलीसिया में कार्य करने देता, यदि मैं उन्हें वहाँ पर ला सकता, सारी देह कार्य कर रही होती। अब यदि आप ध्यान दें, मैं अब कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, और याद रखना मैं इसके विपरीत एक भी शब्द नहीं कहूँगा। मैं हो सकता है पवित्र आत्मा की निंदा कर दूंगा, और परमेश्वर जानता है कि मैं इसे गलत नहीं कहूँगा, समझे। लेकिन मैं ये केवल इसे कह रहा हूँ ताकि आपको वचन के दृष्टिकोण को देने की कोशिश करूँ। इसका लगभग मैंने 20 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद मैं लगभग 30 वर्षों से प्रचार करते आ रहा हूँ, और मैं बस सारी बातों में से होते हुए आया हूँ, बस इसमें से होकर निकला हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसा रहा है, और सारे संसार के हर मनुष्य और उनके सिद्धांत को देख रहा हूँ और इसे लेता हूँ, क्योंकि यह मेरी दिलचस्पी है। यह मेरे खुद के अलावा मनुष्य जाति की दिलचस्पी है। मुझे यहाँ से छोड़कर जाना है, आपको यहाँ से छोड़कर जाना है, और यदि मैं एक झूठे भविष्यवक्ता के नाई जाता हूँ तो मैं अपने खुद के प्राण को खो दूंगा, और मेरे साथ आपके भी प्राण को खो दूंगा। तो यह रोज की रोटी से कहीं अधिक है, यह लोकप्रियता से कहीं अधिक है, यह किसी भी और चीज से कहीं अधिक है। यह मेरे लिए जीवन है, समझे, और मैं हमेशा बहुत ही ईमानदार बने रहना चाहता हूँ। अब आप एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया में जाते हैं, पहली चीज, मेरा मतलब उन सभी से नहीं है, कुछ जो ज्यादातर समय आप कलीसिया में जाते हैं और प्रचार करना आरंभ करते हैं, जब आप प्रचार कर रहे होते हैं तो कोई तो उठकर अन्य जुबान में बोलेगा। अब वो प्रिय व्यक्ति हो सकता है पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो, और ये पवित्र आत्मा हो सकता है जो उस व्यक्ति के जरिए से बोल रहा हो, लेकिन बात ये है कि वे प्रशिक्षित किए हुए नहीं है। यदि मंच पर यह सेवक प्रेरणा के द्वारा बोल रहा है तो भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ता के अधीन होती है, समझे। सारी चीजें की जाए, अब यहाँ पौलुस की ओर जाएंगे। वो ऐसा क्यों कहता है कि जब कोई एक बोल रहा होता है इत्यादि, जब वो बीच में आता है तो वहाँ बस एक गड़बड़ी हो जाती है। अब मैं एक वेदी की पुकार को करता आ रहा हूँ, और कोई व्यक्ति उठकर और अन्य जुबान में बोलने लगता है, यह बस ठीक है, हो सकता है कि आप बस वेदी की पुकार करना भी छोड़ दें, वह इसे रोक देता है, समझे। और फिर एक और बात, बहुत सी बार लोग उठते हैं और अन्य जुबान में बोलते हैं, और लोग बैठकर और च्युइंगम को चबाते हैं, यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। यदि परमेश्वर बोल रहा है तो स्थिर रहकर सुनो। यदि यह सत्य है, यदि वो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति में से बोल रहा है, तो आप शांत बैठ जाएं और सुनें, आदर करें। आपके लिए अनुवाद आ सकता है, देखा, शांत बैठें उसके अनुवाद को सुनने के लिए। अब यदि कलीसिया में कोई अनुवादक नहीं है, तब उन्हें देह में उनकी शांति को बनाए रखना चाहिए। और फिर जब वे एक अज्ञात भाषा से बोलते हैं, तो बाइबल ने कहा वे अपने आप से, उनसे और परमेश्वर से बातें करें। वो जो एक अज्ञात भाषा में बोलता है वह खुद की उन्नति करता है। अब यही अज्ञात भाषाएं हैं, बोलियां, भाषाएं भिन्न हैं, वे कुछ भी नहीं है। वह कहता है लेकिन जो आवाज को करता है उसका एक अर्थ होता है। लेकिन आप यदि कोई तुरही बजती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह की आवाज कर रही है। बस इसे फूकें, या आप नहीं जान पाएंगे कि युद्ध के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है। यदि कोई अन्य जुबान में बोल रहा है और बस सीटी बजाना, इसके लिए बस इतना ही है, कौन जानता है कि क्या करना है। लेकिन यदि यह जागने का बिगुल बजने लगता है, इसका मतलब है उठ जाओ। यदि यह थपथपाहट की आवाज को करता है तो इसका मतलब होता है नीचे उतरो, समझे। यदि यह आक्रमण करने की आवाज को करता है तो इसका मतलब है आक्रमण करो। यह एक अर्थ को देता है, और बस अपने आप के लिए अकेले नहीं बोलती है। तो कलीसिया में यदि कोई अनुवादक न हो लेकिन वहाँ एक अनुवादक है, तब अन्य जुबान वही है जो कलीसिया से संबंध रखता है। अब आपके प्रश्न पर, प्रिय मित्र जो कहता है मैं बल्कि 5,000 शब्द कहने से 5 शब्द कहूँगा, और जिससे लोग मुझे समझ सके, बजाय 5,000 शब्दों के कहने के या इससे अधिक जो कुछ भी कहते हैं अज्ञात भाषा में, यह सच है। लेकिन नीचे पढ़ें, यह उन्नति के लिए प्रकाशन के द्वारा या अनुवाद के द्वारा होना चाहिए, समझे, उन्नति के लिए। अब मैं आपको छोटा सा विचार देता हूँ कि क्या हो यदि मैं आने वाले इस कलीसिया का पास्टर का काम करना होता था। यदि परमेश्वर मुझे इसके पास्टर के काम को करने के लिए बुलाता है तो मैं इसे इस तरह से चलाऊंगा। मैं वहाँ हर उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करूँगा जिसके पास दान हो, और मैं चाहता हूँ कि वे लोग सभा के शुरू होने से लगभग 1 घंटे पहले वे स्वयं एक कमरे में भेंट करें, उन्हें आत्मा के नीचे रहने दो। और पहली बात जो आप जानते हैं, कोई एक वहाँ पर आता है उसे अन्य जबान में बोलने का दान मिला है और वो अन्य जुबान में बोलता है, सब शांत बैठते हैं और फिर कोई एक उठता है और अनुवाद करता है जो वो कहता है। अब इससे पहले कि इसे कलीसिया को दिया जा सके, बाइबल कहती है कि इसे दो या तीन गवाहों के बीच जांचा जाना चाहिए। अब वो मनुष्य जिसके पास आत्मा की परख है, देखा, क्योंकि वहाँ बहुत सी बार दुष्ट शक्तियाँ आ जाती है, देखा, पौलुस ने इसके बारे में बोला है, लेकिन तब वहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ भी होती है। मुझे एक ऐसी सभा बताएं जहाँ पर दुष्ट नहीं बैठा हुआ हो, मुझे बताएं कि जहाँ पर परमेश्वर के पुत्र एकत्र हुए हों, वो शैतान उनके बीच में नहीं हो। यह हर एक चीज में होता है, इसलिए उस पर क्रोधित मत हो जाओ। देखा, शैतान हर जगह पर होता है। अब हम यहाँ पर हैं, कोई तो अन्य जुबान में बोलता है। अब वहाँ तीन जन बैठे हुए हैं जिनके पास परखने की आत्मा है, और एक अन्य भाषा में बोलता है और एक संदेश को देता है। अब यह वचन का हवाला नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर व्यर्थ में दोहराने का उपयोग नहीं करता है, और उसने हमें बताया है कि ऐसा ना करें। देखा, इसलिए ये ऐसा नहीं होता है, यह तो कलीसिया के लिए एक संदेश होता है। इस बेदारी में अब तक हमारे पास दो चीजें थी, देखें कि उनमें से हर एक बिल्कुल सिद्ध थी, बिंदु दर बिंदु सही, समझे, अंदर आई। एक मनुष्य ने उठकर अन्य भाषा में बोला और उसका अनुवाद दिया और सीधे पीछे घुमा और उस संदेश को प्रमाणित किया जो अभी अभी दिया गया। दूसरे एक ने उस रात को उठकर और कहा, भविष्यवाणी की प्रेरणा के नीचे, और कुछ तो कहा नहीं जानते हुए कि वो क्या कह रहा था, और फिर अंत में वो बोल उठा, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। तुरंत ही कुछ तो मुझे तभी प्रेरणा मिली और कहा, दूसरे शब्दों में धन्य है वो जो ये विश्वास करता है कि यह प्रभु आया है। अंतर देखें। तब पवित्र आत्मा कल रात इमारत में उतर आया। देखा, यह उन्नति के लिए है। मैं वहाँ खड़ा था और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें अवश्य ही पवित्र आत्मा को पाना है, और शैतान लोगों के पास आकर यह कहता है, मत सुनो, शांत बैठे रहो। मेरी बहन ने कहा, बिल, जिस समय आप प्रचार कर रहे थे तो मैं बहुत ही खुश थी, ऐसा लगा कि मैं उठकर और दीवार पर से छलांग लगा सकती हूँ। मैंने कहा, उठो और छलांग लगाओ, ऐसा ही है। और उसने कहा, लेकिन जब आप ऐसा करने लगे और कहा, लोग चिल्लाना आरंभ करते हैं, कहा, तब मैंने बस ऐसा महसूस किया जैसे मैं कुछ नहीं, एक बूढ़ी हूँ। मैंने कहा, यही दुष्ट है, यही शैतान है जब वह ऐसा करने के लिए आता है। मैंने कहा, कुछ भी हो, तुम्हें उठकर खड़ा होना चाहिए। हम परमेश्वर के याजक हैं, आत्मिक बलिदान को कर रहे हैं, हमारे होठों के फल उसके नाम को स्तुति देते हैं। देखा, अब यहाँ पर क्या हुआ, तब पवित्र आत्मा उतर आया, क्योंकि यह बस धन्य है वो जो विश्वास करता है। दो तीन रातें सीधे मैंने इसे वहाँ रखने की कोशिश की, और फिर पवित्र आत्मा ने बोला और कहा, प्रेरणा के नीचे, कहा, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मैंने इसे वहाँ पर बोल दिया, धन्य है वो जो विश्वास करता है कि इसमें प्रभु आया है। आपने समझा? और मैं अभी यही बात कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा आप में स्वयं परमेश्वर है। देखा, और उन्होंने इसे पकड़ लिया। देखा, और उसके बाद पवित्र आत्मा लोगों के बीच उतर आया। देखा कि कैसे भविष्यवाणी यह उन्नति करती है। अब भविष्यवाणी और भविष्यवक्ता के बीच अंतर है। भविष्यवाणी एक से दूसरे तक जाती है, लेकिन एक भविष्यवक्ता पालने से ही एक भविष्यवक्ता पैदा होता है। उनके पास यहोवा यो कहता होता है, ना ही उनकी कोई जांच होती है। आप उन्हें यशाया व यर्मिया के सामने खड़ा हुआ नहीं देखते, उनमें से किसी भी भविष्यवक्ता के सामने, क्योंकि उनके पास यहोवा यो कहता है था। लेकिन लोगों के बीच भविष्यवाणी की आत्मा होती है, आपको इसे देखना होगा, क्योंकि शैतान वहाँ उसमें घुस जाएगा। देखा, अब लेकिन इसे अवश्य ही जांचा जाना चाहिए। अब हमारे पास एक बेदारी होने जा रही है। अब इसे अब आप सेवकगण बहुत ही करीब से देखें। हम एक बेदारी की तैयारी करते हैं तो ठीक है, या हो सकता है हम सिर्फ एक नियमित कलीसिया की सभा को कर रहे हों। कलीसिया आग में है, ऐसा हर समय होना चाहिए। तो ठीक है, हो सकता है हमारे पास 5 या 6 लोग हों जो दान पाए हुए लोग हैं, कोई अन्य जुबान से बोलता है, 2 या हो सकता है 3 लेकिन अन्य जुबान में बोलते हों, 4 या 5 अन्य जुबान से बोलते हों, उनके पास जुबानों में बोलने का दान हो, अज्ञात भाषा में बोलने का, उनमें से 2 या 3 अनुवाद कर सकते हों। हो सकता है 1, 2 या उनमें से 3 जिनके पास बुद्धि का दान है। तो ठीक है, वे सभी मिले, वे जो दान पाए हुए लोग हैं, आपको वे दान दिए गए हैं, ना ही उनके साथ खेलने के लिए, ना ही कहने के लिए परमेश्वर की महिमा हो, मैं अन्य जुबानों में बोलता हूँ, हालेलुया। आप खुद को नीचा दिखा रहे हैं, वे आपको दिए गए हैं ताकि इसके साथ काम करें, और कलीसिया में आपका भाग मुख्य सभा के आरंभ होने से पहले आना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में अशिक्षित लोग होंगे। फिर आप कमरे में चले जाएं और वहाँ बैठ जाएं, आप लोग एक साथ हो जाएं, क्योंकि आप सुसमाचार में सहकर्मी हैं। उसके बाद आप वहाँ बैठ जाएं, प्रभु क्या ऐसी कोई बात है जो आप चाहते हैं कि हम आज रात को जानें, हमसे बात करें, ओ स्वर्गीय पिता, प्रार्थना का प्रस्ताव, याचनाएं, गीतों को गाना। आत्मा सीधे नीचे उतर आता है, किसी पर तो उतर आता है, वो अन्य जुबान में बोलता है, एक उठकर और कहता है, योवा यो कहता है, ये क्या है? सुनना, जाकर भाई जोन्स को उस स्थान से दूर जाने के लिए कहो जहां वो रह रहा है, क्योंकि कल दोपहर को उस देश में वहां एक चक्रवाती तूफान आने वाला है और यह उसके घर को उड़ा देगा, वह उसके सामान को लेकर और दूर चला जाए। अब यह अच्छा दिखाई देता है, लेकिन एक मिनट रुकिए, वहां 3 मनुष्य होने हैं जिनके पास आत्मा की परख है। उनमें से एक कहता है यह प्रभु की ओर से था, दूसरा कहता है यह प्रभु की ओर से था, वह 3 के सामने 2 लोग हैं, 2 या 3 गवाह। तो ठीक है, वे इसे एक कागज के टुकड़े पर लिख देते हैं, यही है जो आत्मा ने कहा। तो ठीक है, वे प्रभु का धन्यवाद करते हुए वापस प्रार्थना करते हैं। थोड़ी देर बाद यहोवा यो कहता है, एक भविष्यवक्ता उठ खड़ा होता है, यहोवा यो कहता है कि आज रात न्यूयॉर्क शहर में एक स्त्री आएगी, वह एक स्ट्रेचर या खाट पर होगी, वो खाट पर इमारत के अंदर आएगी, उसके सिर पर हरे रंग का दुपट्टा है, वह कैंसर से मर रही है, उसके इस तरह से होने का जो कारण है प्रभु उसके विरुद्ध है। एक समय जब वो 16 वर्ष की थी, तब उसने उसकी कलीसिया से पैसे चुराए थे। भाई ब्रैनम से कहो कि उसे इन बातों को बताए, यहोवा यो कहता है, यदि वो उसे सही कर ले तो वो चंगी हो जाएगी। जरा एक मिनट रुकना, यह बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन एक मिनट रुकना, आप इस पन्ने पर अपना नाम डालने जा रहे हैं परखने वाले, क्या आप अपना नाम डालेंगे? यह प्रभु की ओर से था, एक ने कहा यह प्रभु की ओर से था, तब आप इसे लिख लें, यहोवा यो कहता है, आज रात एक महिला अंदर आएगी, ऐसी ऐसी बात होगी, जिसके पास आत्मा की परख है उनमें से 2 या 3 उसके नाम का हस्ताक्षर करते हैं, ये सारे संदेश दिए गए हैं। तो ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद वे घंटी को बजते हुए सुनते हैं, कलीसिया लेना शुरू कर दिया है, फिर वे इन संदेशों को लाते हैं, ठीक यहाँ मेज पर रख देते हैं, ठीक यहाँ पर जहाँ उन्हें रखना चाहिए। मैं कहीं पर अध्ययन कर रहा होता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कुछ समय बाद गीत गाए जाने के बाद मैं बाहर आता हूँ, कलीसिया पूरी तरह व्यवस्था में है, लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यही है जो आपको करना है। कलीसिया में आकर और आपस में बात न करें, कलीसिया में परमेश्वर से बात करने के लिए आए, आपका मेल मिलाप वहाँ बाहर करें, समझे? हम अभी परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं और हम यहाँ आकर बात करते हैं, हर एक जन शांति पूर्व आदर पूर्वक है, आत्मा मंडरा रहा है, पियानो वादक गीत की सभा आरंभ होने से लगभग 5 मिनट पहले पियानो पर आता है, बहुत ही मधुरता में शुरुआत करता है, नीचे वहाँ क्रूस पर जहाँ मेरा उद्धार करता मरा, नीचे वहाँ पाप से शुद्ध करने के लिए मैं पुकार उठा, या कोई तो अच्छा मधुर गीत, बहुत ही धीमे से यह सभा के अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को लाता है, देखा? तो ठीक है, लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ वास्तव में रोने लगते हैं और वेदी पर आते हैं, सभा शुरू होने से पहले पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा वहाँ पर है, देखा? कलीसिया प्रसव पीड़ा में है। मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, वे उनके स्थान पर हैं, वे वहाँ बैठकर च्युइंगम नहीं चबाते हैं, कहते हुए हे लेडी मुझे अपनी थोड़ी लिपस्टिक देना, मुझे चाहिए, तुम्हें पता है, तुम समझती हो मुझे आवश्यकता है, तुम्हें पता है उस दिन जब मैं वहाँ खरीदारी कर रही थी और मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने तुम्हारे पैर की उंगली पर पाँव रख दिया था, क्या मैंने कभी ऐसा देखा? तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? ओह दया करें और इसे परमेश्वर का भवन कहते हैं, क्योंकि यह एक शर्म की बात है। मसीह की देह एक साथ आ रही है, वहाँ हम बैठे हैं। पास ही बैठा हुआ पुरुष कहता है, कहो तुम जानते हो जब हम वहाँ गए थे ऐसा फलाना और फलाना और फलाना और फलाना, यही सब ठीक हमें वहाँ बाहर करना है, लेकिन यहाँ पर यह परमेश्वर का भवन है। अंदर आकर प्रार्थना करें, अपने स्थान को लें। मैं अब जो बोल रहा हूँ न ही आपकी कलीसियाओं के लिए भाइयों, मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या करते हो, मैं इस भवन के लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं अपने खुद के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। देखा यह सही है। अब जब आप इस तरह से अंदर आते हैं तब पहली चीज जो आप जानते हैं, पास्टर बाहर चला जाता है, वो तरोताजा होता है, उसे इसका उसका और इत्यादि का उत्तर देने की जरूरत नहीं है, वो ठीक बाहर आता है उसकी सेवकाई की उस ओस से, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के नीचे रहा है, वो ठीक वहीं पर चलकर आता है जहां आग की और जुबानें एक साथ इकट्ठी हुई हैं। यह अब लगभग एक स्तंभ होता है, देखा वह यहां वहां मंडरा रहा है, वह चलकर यहां आता है, इसे उठाता है, कलीसिया से एक संदेश, यहोवा यो कहता है, भाई जॉन्स को अपने घर से निकलना होगा, कल दोपहर 2 बजे एक तूफान उसके क्षेत्र में दस्तक देगा, उसके सामान को लेकर और दूर निकल जाए, भाई जॉन्स इसे जान लेता है, तो ठीक है यह रिकॉर्ड पर होता है। यहोवा यो कहता है, आज रात को फलाना और फलाना नाम की एक महिला यहाँ पर आएगी, और ऐसा था उसने फलाना और फलाना किया है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, देखो इस तरह, तो ठीक है यह पूरा हो गया है, ऐसा ही है, उन्हें पहले ही कलीसिया में उनका स्थान मिल गया है, तो ठीक है। उसके बाद वो संदेश को लेता है और पहली बात जो आप जानते हैं वह प्रचार करना आरंभ करता है, अनुवाद करने के लिए कुछ भी नहीं है, यह पहले ही हो चुका है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम संदेश को प्रचार करते हैं, और कुछ समय बाद जब पहली चीज जो आप जानते हैं जब संदेश समाप्त हो जाता है, चंगाई की पंक्ति आरंभ होती है, यहाँ एक महिला आती है, कोई तो एक अन्य जुबान में बोल चुका है और बताया है कि वो आ रही है, समझे, हम में से हर एक जन जानता है कि क्या होने वाला है, हम में से हर एक जन इसे जानता है। देखो किस तरह से विश्वास उनके साथ बढ़ना आरंभ होता है, अब अग्नि की जीभें आपके ऊपर ठहरी हुई होती हैं, वह एक साथ एकत्र होने लगती हैं, क्योंकि यह बस एक समाप्त हुआ काम है, ऐसा ही है। वो महिला मैं कहूँगा न्यूयॉर्क शहर से श्रीमती फलाना और फलाना यहाँ पर बैठी हुई है, देखा, और ये सही है, आप उसे कैसे जानते हैं? यह प्रभु की ओर से कलीसिया के लिए एक संदेश है। जब आप 16 वर्ष की थी तो क्या आप एक ऐसे ऐसे स्थान पर नहीं थी और ऐसा किया था, कलीसिया से कुछ पैसे ले लिए थे और इसकी चोरी की और उन पैसों से नए वस्त्र ले आई? ओह ये सही है, ये सही है, ठीक ऐसा ही परमेश्वर ने आज रात फलाना और फलाना भाई के द्वारा बताया है, जिसे अन्य भाषा में बोला गया, फलाना और फलाना भाई ने अनुवाद को किया, यहाँ फलाना और फलाना भाई ने कहा, इसे परखने के द्वारा कहा कि ये प्रभु की ओर से था और ये सच है, जी हाँ। तब यहोवा यो कहता है, जाओ इसे सही कर लो और तुम अपने कैंसर पर जय पाओगी। भाई जॉन्स घर जाता है, गाड़ी को लेता है, वापस जाता है, अपने फर्नीचर को लेता है और वहाँ से दूर चला जाता है। कल दोपहर 2 बजे तूफान, सारी चीजें चली जाती हैं। देखा, तब कलीसिया महिमा करती है, धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी भलाई के लिए। अब कलीसिया के लिए ये उन्नति करना है, यही है। अब क्या हो यदि उनके कहने के बाद भी ऐसा नहीं होता है? तब तुम्हारे बीच एक दुष्ट आत्मा है, आप वह दुष्ट चीज को नहीं चाहते हैं। आप भला किसी बुराई को क्यों चाहेंगे जबकि वो आकाश वास्तविक पेंटिकॉस्टल से भरा हुआ है? शैतान से कोई पुराने विकल्प को न लें, उस तो वास्तविकता को लें, परमेश्वर के पास ये आपके लिए है। तब आपके पास अब और सभाएं नहीं होती है और यहाँ पर किसी भी चीज को नहीं डालते हैं जब तक कि परमेश्वर पहले ही इसे प्रमाणित नहीं करता है कि आप सही हैं, क्योंकि आप एक सुसमाचार के कार्य में कलीसिया के सहायक हैं। अब आप इसे समझ गए कि ये क्या है, और अन्य जुबान अज्ञात भाषाएं, कोई मनुष्य नहीं वो जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, वो बोलता है, लेकिन हर एक आवाज या ध्वनि का एक अर्थ होता है, इसका एक अर्थ है, गुलुक 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 यह एक कहीं की भाषा है। जब मैं अफ्रीका में था, मैंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन हर एक चीज जो आवाज करती थी उसका किसी प्रकार का एक अर्थ होता था। बाइबल कहती है कि बिना कोई महत्व के, बिना कोई अर्थ के कोई आवाज या ध्वनि नहीं होती है। हर एक ध्वनि जो होती है उसका कुछ न कुछ तो अर्थ होता है, क्योंकि मैंने लोगों को कहते सुना है, मैं कहता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, उनमें से एक अनुवादक बोलेगा, दूसरा अनुवादक बोलेगा, और ये था यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। देखा, ये एक और मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन उनके लिए यह एक भाषा थी, बस जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूँ। जब जुल्लू, पोछा, बसुतो और जिस किसी का भी अनुवाद साथ साथ आता है, हर एक जन अनुवाद करता है जो कहा गया था, हर एक समझ गए। और ये बातें जो तुम इन लोगों को ऐसे ही बुदबुदाते हुए सुनते हो और सोचते हैं कि यह बहुत से अस्पष्ट बोल हैं, ऐसा नहीं है, इसका एक अर्थ होता है, इसलिए हमें इसका आदर करना चाहिए, इसे इसके स्थान पर रखना चाहिए। अब हो सकता है कोई संदेश नहीं आया है, अब सभा समाप्त हो गई है, वेदी की पुकार की जा चुकी है, और कुछ समय के बाद कोई तो वहाँ कोई संदेश वापस नहीं आया, कोई मौका मिलते ही उठ खड़ा होता है, पवित्र आत्मा। अब बाइबल ने कहा, यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला शांत रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना भी बोलने की कोशिश कर रहा हो, अपनी शांति बनाए रखें। कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, बाइबल ने कहा कि आप कर सकते हैं, समझे? सो इससे बात खत्म हो जाती है। देखा, वो अपनी शांति बनाए रखें। फिर जब ये मौका आता है जहाँ सब कुछ व्यवस्था में होता है, फिर यदि पवित्र आत्मा उस पर संदेश देने को उतर आता है तो इसे दें। बिल्कुल ठीक यही है जो आपको करना चाहिए। तब अनुवाद आता है, कहता है सैली जोन्स के नाम से यहाँ पर एक महिला है, मैं आशा करता हूँ कि उस नाम की महिला यहाँ नहीं है, लेकिन सैली जोन्स, देखा, उसे बताएं कि यह उसके पुकार की आखिरी रात है, इसे परमेश्वर के साथ सही कर ले, क्योंकि उसके पास कम समय है, वो यहाँ पर होगी। अब सैली जोन्स वेदी तक उतनी ही तेजी से दौड़ेगी जितनी जल्दी वो वहाँ जा सकती है, देखा, क्योंकि यह उसकी आखिरी पुकार है। देखा, यही एक संदेश को देना है, या एक प्रमाणित होना, या कुछ तो और। यह पेंटिकॉस्टल कलीसिया कार्य में होती है, वहाँ दुष्ट आत्माओं के अंदर घुसने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही बाइबल बिल्कुल ठीक बताती है, इसमें से दो या तीन बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें, यही कलीसिया है। लेकिन आज हम इसे कहाँ लाए हैं? कूदते हैं, करते ही जाते हैं, हंसते हैं और करते ही जाते हैं। जब कोई अन्य जुबान में बोल रहा होता है, दूसरा एक देख रहा होता है, कुछ तो और बात कर रहा होता है, और यहाँ वहाँ भीड़ लगाते हैं, पास्टर कुछ तो कर रहा होता है, या कोई आसपास भीड़ लगा रहा होता है, तो यह ठीक नहीं है। हो सकता है कि पास्टर प्रचार कर रहा हो और कोई तो उठकर और उसे बीच में रोकता है, हो सकता है बाइबल को पढ़ रहा हो और कोई तो बाइबल को पढ़ रहा हो और वहाँ कोई तो पीछे अन्य जुबान में बोलने लगता है, ओह नहीं, समझे? प्रचारक ऊपर पुलपिट में प्रचार कर रहा है, कोई तो उठता है और उसे रुकावट डालता है, अन्य जुबान में बोलने लगता है, ये ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि यह पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि पवित्र आत्मा का उपयोग कैसे करना है। देखा, इसके उपयोग करने के लिए, अब मैं ले रहा हूँ, क्या आपके पास एक और के लिए जगह है? तब कल रविवार, फिर हम आइए, हम बस यहाँ एक है, मैं सोचता हूँ कि ये सबसे कृपा से भरा हुआ है। और अब यदि आप सब मेरे साथ बस कुछ अधिक मिनट के लिए कृपा धीरज धरे, और फिर मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसे समझें। मैंने इसे पहले से सोच कर रखा है, ये मेरा आखिरी एक है। अब पहले मैं उन दो बातों को पढ़ने जा रहा हूँ जो उस व्यक्ति ने पूछी थी। यह एक पुराने कागज के टुकड़े पर लिखा है जिसे एक सुंदर हस्तलेख से लिखा गया है, नहीं जानता ये कौन है, उनमें से किसी के नाम के हस्ताक्षर नहीं है। भाई ब्रैनम, क्या सेवकों के लिए उनके स्वभाव में पैसे के लिए ज्यादा खींचतान करना सही है, कहते हुए कि परमेश्वर ने उन्हें बताया है कि श्रोतागण में इतने लोगों को इतना कुछ देना चाहिए? यदि यह सही है तो मैं जानना चाहता हूँ, या यदि यह गलत है तो मैं जानना चाहता हूँ। इस बात ने मुझे बहुत अधिक परेशान किया है। अब आप देखिए मित्र, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ जो मैं सोचता हूँ। देखा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये ठीक है, मैं सोचता हूँ कि यह बहुत बेकार बात है। अब मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर ने मुझे कार्य क्षेत्र में भेजा है मैंने उस समय को देखा है जहां मैं ऐसा दिखता था कि मैं सबसे नीचे हूं और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और मैं कहूंगा बस पैसा एकत्र करने की प्लेट को घुमाएं और प्रबंधक मेरे पास आकर कहता है देखो बिली हमें आज रात लाल रंग के $5,000 चाहिए। लड़के क्या आपके पास इसे देने के लिए जेफरसन विले में पैसे हैं? मैं कहता ये ठीक है परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है नहीं तो मैं नहीं आता। देखा बस दान लेने की प्लेट को घुमाएं और सभा खत्म होने से पहले कोई कहता है आप जानते हैं प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है कि इसके लिए $5,000 दूं। देखो समझे सबसे पहले इसे करने के लिए अगुवाई होना है। मैं पैसे खींचने निवेदन करने और मांगने में विश्वास नहीं रखता। मैं सोचता हूँ कि ये गलत बात है। अब भाई यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे आपकी भावना को ठेस न पहुँचाने दें समझे। आपके पास हो सकता है ऐसा करने के लिए परमेश्वर से मार्गाधिकार हो लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए बोल रहा हूँ मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। अब मैं यहाँ तक उन सेवकों को भी जानता हूँ जाते हैं और कहते हैं मैं ठीक खड़ा था ज्यादा समय नहीं हुआ। अब यह पेंटिकॉस्टल नहीं है यह है तो ठीक है ये कलीसियाएं हैं। देखा दूसरी कलीसियाएं हैं। ऐसा एक बड़े शिविर की सभा में था। गर्टी आप मेरे साथ थे कई अन्य लोग मौजूद थे और उन्होंने पूरी दोपहर का समय एक प्रसिद्ध संप्रदाय पर लिया। उनमें से दो या तीन ने एक साथ मिलकर यही औपचारिक नियमित कलीसियाएं हैं जैसे शहर में यहाँ हमारी आधुनिक कलीसियाएं और इत्यादि हैं एक बड़े सम्मेलन में और उन्होंने पूरी दोपहर का समय लिया मंच पर खड़े होकर और डराने लगा कि परमेश्वर उनकी फसलों को नष्ट कर देगा उनके बच्चों को पोलियो दे देगा और उस तरह की चीजें करेगा यदि उन्होंने उस सभा में पैसे नहीं डाले तो। बिल्कुल यही सच्चाई है बाइबल के साथ जो मेरे सामने है। मैंने कहा यह परमेश्वर और उसके अनुसरण करने वालों की ईश निंदा है। यदि परमेश्वर आपको भेजता है तो वो आपकी देखभाल करेगा यदि उसने आपको नहीं भेजा है तब संप्रदाय को आपकी देखभाल करने दो लेकिन आप यदि परमेश्वर आपको भेजता है तो वह आपकी देखभाल करेगा। पवित्र आत्मा की कलीसिया में क्रिसमस के नाटक के विषय में क्या तो ठीक है यदि यह मसीह के बारे में है तो यह अच्छी बात हो सकती है लेकिन यदि बात संता क्लॉस की है तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं इस बात में बड़ा हुआ हूँ मैं इन चीजों से दूर होकर बड़ा हुआ हूँ मैं सांता क्लॉस में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता समझे। और इनमें से कुछ छोटी क्रिसमस की बातें जो उनके पास हैं मैं सोचता हूँ कि यह मूर्खतापूर्व है और लेकिन मैं सोचता हूँ कि उन्होंने क्रिसमस से पूरी तरह से मसीह को निकाल लिया है और इसमें सांता क्लॉस डाल दिया है और सांता क्लॉस एक काल्पनिक कहानी है। मैं आपकी किसी भी भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं मैं आशा करता हूं विशेषकर बच्चों में लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहां ज्यादा समय पहले की बात नहीं है लगभग 25-30 साल पहले जब इस शहर में एक सेवक जो किसी बड़े कलीसिया का पास्टर था यहां शहर में जिसे मैं अच्छी तरह से जानता था मेरा एक गहरा मित्र है वो मेरे पास चलकर आया और चार्ली बोहनोन भाई माइक आपको चार्ली बोहनोन याद होंगे मेरा एक अच्छा मित्र वहाँ अपने कार्यालय में बैठा हुआ था और कहा मैं अपने बच्चों को कभी नहीं बताऊंगा या मेरे पोतियों पोतियों को अब से इस झूठ को और नहीं बोलूंगा। उसने कहा मेरा अपना छोटा बेटा मेरे पास आया जब वो 12 वर्ष का हो गया और सांता क्लॉस के बारे में बात कर रहा था और उसने कहा क्यों प्रिय मुझे आपसे कुछ कहना है। कहा माँ आप जानते हैं और आगे बढ़कर बताने लगा कि उसने क्या किया है। फिर उसके वापस आने के बाद कहा तब पिताजी क्या यह इशू वही बात है सच्चाई को बताएं। सांता क्लॉस एक व्यक्ति क्रिस किंगरल या संत निकोलस के विषय में कैथोलिक पहनावा है। बहुत वर्ष पहले का एक पुराना जर्मन कैथोलिक संत जो बच्चों की भलाई करते हुए घूमता फिरता था और उन्होंने इसे एक रीति रिवाज के नाई आगे बढ़ाया है लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है वो वास्तविक है और जीविता है। अब यहाँ एक प्रश्न है एक आखिरी जो बहुत ही अब देखो इस पर आप मुझसे असहमत हो सकते हैं लेकिन यदि आप मुझसे असहमत होते हैं याद रखें इसे मित्रता पूर्वक करें क्या आप करेंगे। मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं नहीं चाहता आपको ठेस नहीं पहुँचाना चाहता मैं ईमानदार बने रहना चाहता हूँ। यदि मैं नहीं कर सकता यदि मैं अपने लड़के से झूठ बोलता हूँ तो मैं एक झूठा हूँ। देखा मैं उसे सच्चाई को बताना चाहता हूँ। अब मैं उसे सांता क्लॉस के बारे में बताता हूँ मैं कहता हूँ हाँ जरूर सांता क्लॉस है क्रिसमस की रात पिता को देखो समझे। जी हाँ आप जानते हैं उस दिन मैं वहाँ नीचे था और मैंने बस देखने के लिए एक छोटी लड़की पर इसका प्रयास किया। मुझे यकीन है कि वेतन के परसों का दिन था मैं इमारत में था और वे वहाँ पर खड़े हुए थे, यहाँ नीचे कैकवर मेड में, और मैं किराने का सामान लेने के लिए वहाँ चला गया। और इसलिए हम पत्नी और मैं वहाँ पर थे, और एक छोटी सी चुलबुली लड़की थी जो लगभग 18 महीने से अधिक की नहीं थी, और वो वहाँ पर खड़ी थी, गाते जा रही थी, डिंगल बेल्स। और मैंने कहा, उसकी छोटी सी जगह में, आप जानते होंगे, छोटी पहियेदार गाड़ी के पीछे बैठी हुई थी। मैंने कहा, क्या तुम सांता क्लॉज के लिए देख रही हो? उसने कहा, वो मेरे डैडी है महोदय। मैंने कहा, तुम्हारे छोटे हृदय को आशीष मिले प्रिय, तुम्हारे पास बुद्धि है। अब यहाँ एक वास्तव में पेचीदा है मित्रों, और इसमें उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। और यह एक बढ़िया वचन है, लेकिन यह हर उस व्यक्ति के लिए एक पेचीदा है जो ऐसा प्रतीत होता है, और ये मेरे मन में वर्षों और वर्षों से है, और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से। और मेरी बहुमूल्य पत्नी अभी वहाँ पीछे बैठी हुई है। जब उसने सुना कि आज दोपहर मेरे पास ये प्रश्न है, उसने कहा, बिल, आप इसका उत्तर कैसे देंगे? उसने कहा, मैंने हमेशा ही इसे अपने आप में सोचा है, कहा, मैं इसे कभी नहीं समझ पाई। और कहा, मैंने कहा, हृदय प्रिय, आज रात वहाँ सभा में आना, मैं परमेश्वर की सहायता से अपनी पूरी कोशिश करूँगा। भाई ब्रैनम, कृपया इब्रानियों 6:4 से लेकर 6 का वर्णन करें। यह एक समय वास्तव में, देखो, अब आपको यहाँ हमारे विश्वास अनुग्रह पर देखना होगा, विश्वासियों की सुरक्षा, संतों की दृढ़ता, दृढ़ता, मेरा मतलब संतों की। इब्रानियों का 6:4-6। अब जैसे ही यह इसे समाप्त करता हूँ, तब मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर मुझे इसे आपके लिए स्पष्ट करने में सहायता करेगा। मुझे क्षमा करें, मेरे पास आज रात के लिए मेरा संदेश है। हो सकता है कि मैं सुबह उसी बात पर प्रचार करूं सभा में, तब मैं चला जाऊंगा। अब यह एक वास्तव में पेचीदा है, देखा। अब आपको देखना होगा, अब याद रखना, हम विश्वास करते हैं और इस कलीसिया में सिखाते हैं, यह नहीं कि प्रत्येक जो आता है और चिल्लाता है, प्रत्येक जो अन्य जुबान में बोलता है, प्रत्येक जो प्रचारक से हाथ मिलाता है, उसके पास अनंत जीवन है। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यदि आपको अनंत जीवन मिला है, यदि परमेश्वर आपको अनंत जीवन देता है, तो आपको ये हमेशा के लिए मिल गया है, देखा। क्योंकि देखो, यदि ऐसा नहीं होता तो यीशु एक झूठा शिक्षक पाया जाता। संत यूहन्ना 5:24 में उसने कहा, वो जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है, जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है, और वो कभी भी न्याय पर नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब उससे विवाद करें, वे सब जिन्हें पिता ने मुझे दिया है, कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे ना खींच लाए। मैं वचन का हवाला दे रहा हूँ। वे सब जो आते हैं, कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि मेरा पिता उसे पहले न खींच लाए। और वे सारे जिसे मेरे पिता ने मुझे दिया है, वो सब मेरे पास आएंगे, देखा। और जो कोई मेरे पास आता है, मैं उन्हें अनंत काल का जीवन दूंगा, संत यूहन्ना 6, और उसे अंतिम दिनों में जिलाऊंगा, यही उसके शब्द हैं। अब देखो, यदि मैं इफिसियों के पहले अध्याय में वापस जाना चाहूं, पौलुस प्रचार कर रहा है। अब कुरिन्थियों हरेक के पास एक जुबान और एक स्तुति के गीत थे। आपने ध्यान दिया कि अन्य कलीसियाओं में यह परेशानी नहीं थी, उसने इस बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा। क्या उसने कभी इफिसियों कलीसिया, रोमन कलीसिया में कहीं भी जुबानों का उल्लेख किया है? नहीं, उनके पास अन्य जुबानों में बोलना और हरेक चीज थी, बिल्कुल कुरिन्थियों के जैसे, लेकिन उन्होंने इसे व्यवस्था में रखा था। कुरिन्थियों इसे व्यवस्था में नहीं रख सके, समझे, लेकिन पौलुस ने वहाँ जाकर और कलीसिया को व्यवस्था में रखा। अब वो, मेरा विश्वास है, जैसा कि ओरल रॉबर्ट्स कहते हैं, परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, क्या आप ऐसा विश्वास नहीं करते? और आप कहते हैं ठीक है, तब पेंटिकॉस्टल के बारे में क्या, जो अन्य जुबान के साथ है? भाई ब्रैनम, मैं सोचता हूँ कि उनके पास पवित्र आत्मा है, निश्चय ही उन्होंने किया। तो ठीक है, क्यों? देखो, आप विश्वास करते हैं कि वो एक भला परमेश्वर है। थोमा ने एक बार कहा, आप जानते हैं प्रभु, बाकी सब ने उस पर विश्वास किया, कहा, ओह, हम जानते हैं कि वो वास्तविक है। ओह, थोमा ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसे विश्वास नहीं करता। एक ही तरह से मैं इस पर विश्वास करूंगा, उसके लिए मेरे पास कुछ प्रमाण होना चाहिए। मैं अपनी उंगलियों को उसके बाजू में और उसके हाथों के कीलों के निशानों में डालना है। वो एक भला परमेश्वर है। उसने कहा, आगे बढ़ो थोमा, यहाँ तुम हो। ओह, थोमा ने कहा, अब मैं विश्वास करता हूँ। उसने कहा, हाँ थोमा, तुम्हारे मुझे देख लेने के बाद और मुझे महसूस किया और मेरा हाथ तुम्हारे हाथ को मेरे बाजू में डालकर तुम विश्वास करते हो, लेकिन उनका प्रतिफल कितना बड़ा है जिन्होंने कभी नहीं देखा और फिर भी विश्वास करते हैं। वो एक भला परमेश्वर है। निश्चय ही वो आपको आपके हृदय की इच्छा को देता है। आइए केवल उस पर विश्वास करें। यही है, यही ही शैतान के लिए मौत का प्रहार है। जब एक मनुष्य परमेश्वर को उसके वचन पर लेता है भाई, तो वो हर समय शैतान को मारेगा। यही पूरी तरह से प्रहार होता है जो शैतान को मिल सकता है, जब एक मनुष्य परमेश्वर को उसके वचन पर लेगा। जी हाँ श्रीमान, जैसा कि मैंने कहा, मनुष्य केवल नहीं जिएगा, यीशु ने एक रात को कहा, लेकिन हर एक वचन जो निकलता है। अब इस पर ध्यान दें। अब मैं पहले पद से शुरू करने जा रहा हूँ, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। अब पहली चीज जो मैं चाहता हूं कि आप जानें, पौलुस यहां किससे बात कर रहा है? इब्रानियों से। वे कहते हैं इब्रानियों, सबसे ऊपर इब्रानियों की किताब है। क्या यह सही है? जिन यहूदियों ने यीशु को ठुकरा दिया था, क्या आप इसे अब पकड़ रहे हैं? वह यहूदियों से बात कर रहा है, उन्हें व्यवस्था की छाया को दिखा रहा है जो एक मसीह का नमूना है। सारी पुरानी बातें एक नई का नमूना है। अब देखें, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। अब वो उनसे शिक्षाओं के बारे में बात कर रहा है। आइए हम चलें और सिद्ध चीजों के बारे में बात करें। अब आप परमेश्वर में सिद्ध होते हैं जब आप अपने छुटकारे के दिन तक पवित्र आत्मा के द्वारा मोहरबंद किए जाते हैं। वह जो परमेश्वर से जन्मा है, पहला यूहन्ना, वो पाप नहीं करता, क्योंकि वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें परमेश्वर का बीज बना रहता है। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है, ना ही सोचता है कि वह भरा हुआ है, लेकिन जो परमेश्वर के आत्मा से जन्म लेता है, वो पाप नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें है और वो पाप नहीं कर सकता। देखा, क्या बाइबल ऐसा कहती है? तो वहाँ पर ये है, आप ये नहीं कि आप क्या करते हैं, क्या है, क्या है, ऐसा नहीं कि संसार आपके बारे में क्या सोचता है, ये ऐसा है परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। देखो, देखा, आप नहीं, मेरे पास भला शहर के मेयर के द्वारा लिखा गया आदेश किस तरह से हो सकता है कि मैं शहर में 40 मील प्रति घंटा से गाड़ी को दौड़ा सकता हूँ और कोई भी पुलिस वाला मुझे बंदी न बनाए? मैं नहीं कर सकता। मैं कैसे पाप कर सकता हूँ जब परमेश्वर के सामने निरंतर लहू अर्पण हुआ है, जहाँ वो मुझे देख भी नहीं सकता? जब वहाँ पर बम्पर है मेरे और परमेश्वर के सामने लहू की ढाल है, क्योंकि हम तो मर चुके हैं और हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा मसीह में छिपा हुआ है, जिस पर पवित्र आत्मा से मोहर लगी है। आप भला कैसे संसार में परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी गलत कर सकते हैं? यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, इब्रानियों 10 सत्य के ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तब पाप के लिए और कोई बलिदान नहीं है, वहाँ पर असंभव है। देखा, जानबूझकर पाप करना। अब आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो ठीक है, सिद्धता और ना ही फिर से मरे हुए कामों से मन फिराने की नींव डालते हुए और परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मों की शिक्षा और हाथ को रखने और मरे हुए का पुनरुत्थान और अनंत न्याय, और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। अब यहाँ पर जहाँ वे चौथे पद से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये उनके लिए असंभव है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। अब ऐसा दिखाई देता है, वहाँ से होते हुए आप इसे यहाँ समझ रहे हैं कि एक मनुष्य पवित्र आत्मा को पा सकता है और फिर पीछे हट सकता है और खो सकता है, लेकिन ऐसा करना उसके लिए असंभव है। देखा, वो इसे नहीं कर सकता। यदि उसने किया तो मसीह झूठा ठहरता है, समझे। ये उनके लिए असंभव है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है। अब यहाँ देखें, वो किससे बात कर रहा है? वो उन सीमा रेखा के यहूदियों से बात कर रहा है। उसने कभी नहीं कहा कि एक मनुष्य पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। उसने कहा यदि उसने परमेश्वर के वचन का स्वाद चखा है। अब मैं इसे केवल एक नैतिक कथा के रूप में बताता हूँ, जिससे कि आप इसे देख पाएं और अब इससे चूकना नहीं। अब वो इन यहूदियों को लिख रहा है, उनमें से कुछ सीमा रेखा के विश्वासी हैं। देखा, उसने कहा अब हम इन कामों को छोड़कर सिद्धता के बारे में बात करने जा रहे हैं। कहा अब हम बपतिस्मे और मरे हुओं के पुनरुत्थान और हाथ रखने और हर एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आओ अब सिद्धता के बारे में बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं जब आप पवित्र आत्मा में आते हैं। अब आप बहुत अधिक समय से सभा के आसपास बने रहे हैं और आपने उन लोगों को देखा है, वे आसपास बने रहेंगे, वे ना ही अंदर आते हैं या ना ही बाहर जाते हैं। वे पवित्र आत्मा की सराहना करते हैं, वे नजदीक आएंगे और हो सकता है कि पवित्र आत्मा कुछ तो करता है और वे लोग उठकर और चिल्लाएंगे और इस बात पर फर्श पर ऊपर और नीचे कूदेंगे, लेकिन वे इसे अपने खुद के लिए कभी भी नहीं पाना चाहते हैं। नहीं नहीं, देखा, और वे कहेंगे ओह जी हाँ ये अच्छा है, ओह मैं अभी इसके बारे में नहीं जानता हूँ। देखो देखो, समझे, ये सीमा रेखा के विश्वासी हैं, बस इतने नजदीक, इतना तक कि वे इसका स्वाद चख सकते हैं, लेकिन फिर भी वे इसे ग्रहण नहीं करते हैं। देखा, अब वे इतने लंबे समय तक ऐसे ही आना जाना करते हैं, कुछ समय बाद इतना तक कि वे धीरे धीरे पूरी तरह से दूर निकल जाते हैं। मैं बहुत से लोगों के नाम बता सकता हूँ जो भवन में थे, इसी तरह के काम को किया, पूरी तरह से फिर से भटक जाते हैं। पश्चाताप के लिए खुद को नया बनाना, उनके लिए कोई पश्चाताप नहीं है, उन्होंने बस आत्मा को शोकित करके अपने से दूर कर दिया है। वे यहाँ तक कि इतने नजदीक रहे हैं, यहाँ यदि आप मेरे साथ जाएंगे, आपके पास समय नहीं है अब मैं जानता हूँ, लेकिन यदि आप व्यवस्था विवरण के पहले अध्याय को खोलेंगे और इसे पढ़ेंगे तो आपको वही बात मिलेगी इसे चिन्हित करते हुए, व्यवस्था विवरण का पहला अध्याय। अब और 19वें पद से शुरू करते हैं और 26वें पद तक पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण। आप देखेंगे, अब देखें, सारा इज़राइल, वे लोग क्या करते हैं, वे कादेश बर्निया में आते हैं। ओह मैं कुछ तो देख रहा हूँ, यह भवन, यह पेंटिकॉस्टल संसार ठीक अभी कादेश बर्निया में है। यह बिल्कुल सही है भाई नेविल, हम कादेश बर्निया में हैं, जो संसार का न्याय का आसन है, न्याय का आसन था। और भेदिए या गुप्तचर चले गए, यहोशू ने यहाँ कहा अब मैंने भेदिए भेजे, मेरा मतलब मूसा ने कहा मैंने तुम्हारे गोत्रों में से हर एक में से एक पुरुष 12 भेदियों को भेजा, मैंने उन्हें देश का भेद लेने के लिए और वापस खबर लाने के लिए भेजा है, क्या ये सही है? और जब वे लौटे तो 12 में से 9 ने कहा ओह ये एक अच्छा देश है, लेकिन ओह दया हम इसे नहीं ले सकते हैं। ओह प्रभु, वहाँ एमोरी लोग रहते हैं और हम उनके सामने टिड्डियों के समान दिखाई पड़ते हैं, वे हथियार से लदे हुए पुरुष हैं, उनकी दीवारें बड़ी बड़ी हैं। ओह यह बहुत, क्योंकि काश कि हम पीछे उस और मिस्र में ही मर जाते बजाय इसके तुम हमें बाहर निकालकर यहाँ ले आते। लेकिन छोटे बूढ़े काले और वहाँ पर यहोशू कूद पड़े और उन्हें चुप कराया, कहा हम इसे लेने में सक्षम से भी बढ़कर हैं। जी हाँ श्रीमान, वहाँ वो एक है। अब देखो क्या हुआ, कालेब और यहोशू जानते थे कि परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है। मैं परवाह नहीं करता कि यह कितना बड़ा है, कितनी बड़ी रुकावटें हैं, वे कितनी ऊंची हैं, वे कितनी विशाल हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा कहा है और हम इसे ले सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि वे केवल दो ही लोग थे जो कि 2.5 लाख लोगों में से जो कभी पार करके देश के अंदर आए थे, क्योंकि उन्होंने उनके विश्वास को थामे रखा था उस बात पर जिसे परमेश्वर ने सत्य होने के लिए कहा था। आमीन। वो भवन ठीक अभी कादेश बर्निया में खड़ा है। देखो वे लोग इतने नजदीक थे, इतना तक कि उन्होंने देश में से अंगूरों का स्वाद भी चखा था, वे अंगूर खाते हैं। जब काले और वे लोग वहाँ जाकर वापस अंगूरों को ले आए, तब उन लोगों ने कुछ अंगूर तोड़कर और उन्हें खाया। ओह वे अच्छे हैं, लेकिन हम इसे नहीं कर सकते। जिन लोगों ने परमेश्वर के भले काम के स्वाद को चखा है, पवित्र आत्मा का स्वाद चखा है और इसकी भलाई को देखा है, इसका स्वाद चखा है, परमेश्वर के वचन का स्वाद चखा है। इसे समझे, ना ही उनमें से किसी पुरुष को, उनमें से एक को भी कभी भी वहाँ पर जाने नहीं दिया गया था। वे उनके अपने ही देश में नाश हो गए, यहाँ पर जंगल में वे कभी भी वहाँ पर नहीं गए, फिर भी वे इसका स्वाद चखने के बहुत ही नजदीक थे, लेकिन इसे लेने के लिए इतना अनुग्रह और विश्वास नहीं था। यह वही है। अब उस प्रिय व्यक्ति को सुनना जिसने इस पत्र को लिखा है। आइए अब अगले पद को पढ़ते हैं। बस एक मिनट देखें, पौलुस को देखें। आइए अब सातवां पढ़ते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है उसे पी पी कर उन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और सापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। अब देखो वो क्या कहता है। अब देखो यहाँ पर यह प्रश्न था। अब और फिर हम बंद कर देंगे। इस चीज ने मुझे वर्षों तक मारना चाहा। मैं एक बार एक सभा में गया था जहाँ मिशावाका इंडियाना में लोग अन्य जुबान में बोल रहे थे। अब मैं अपने खुद के झुंड के सामने हूँ। आपने उन लोगों को सुना है, मुझे मेरी जीवन कथा को बताते हुए सुना है, और उस अश्वेत मनुष्य के बारे में जिसने कहा यहाँ है वो, यहाँ है वो। अब मैंने यह बताया, लेकिन इसका बाकी का मैंने दो मनुष्य को देखा। वे एक संदेश को देगा, दूसरा एक अनुवाद करेगा। दूसरा एक संदेश को देता है और दूसरा एक उसका अनुवाद करता है। और भाई वे सही थे। सिर्फ ये मैंने सोचा, हे प्रभु, मैंने कभी इस तरह कुछ भी नहीं देखा। मैंने कहा मैं दूतों के बीच में हूँ। मैंने सोचा मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। एक बोलेगा और दूसरा एक, और मैं वहाँ पीछे बैठा हूँ एक छोटे प्रचारक की नाई। आप दोनों पुरुष कभी कभी और उनके हाथ को मिलाते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसे मनुष्य कभी नहीं देखे। वे एक संदेश को बोलते और दूसरा एक उसका अनुवाद करता, और ओह प्रभु ये अद्भुत था। एक बोलेगा और दूसरा एक अनुवाद करेगा, दोनों, और वे बस चूने के पत्थर से सफेद हो जाते जब वे उनके हाथ ऊपर उठाते हैं। मैंने सोचा, ओ मेरे प्रभु, मैं सारी जिंदगी भर कहाँ रहा हूँ। यह वो बात है। मैंने कहा, ओ पेंटिकॉस्टल सही है, यह बिल्कुल सही है। मैंने कभी भी इतना नहीं देखा, लेकिन अभी जो ठीक लगभग यहाँ हुआ था, जहाँ हो सकता है कि कुछ महिलाएं कहीं तो मिशन के साथ हों और वे वाद विवाद करते होंगे और एक दूसरे को कहते हों गिद्धों का बसेरा, और आप जानते होंगे बस इसी प्रकार से कुछ तो एक प्रकार से एक दूसरे पर विवाद करते हैं, ना ही स्त्रियों की बिना परवाह किए या ना ही कुछ, लेकिन बस यह निचले स्तर पर था। यदि आप में से कोई, आपको याद होगा भाई ग्राम, आप उस समय बस एक छोटे से लड़के ही थे, और सो यह इसी तरह से था। और मैंने उसकी बात को सुना और मैंने सोचा, ओ प्रभु, मैं दूतों तक पहुंचा हूं। एक दिन घर के कोने के पास से आ रहा था, लगभग दूसरे दिन मैं एक मनुष्य से मिला। मैंने कहा, आप कैसे हैं श्रीमान? उसने कहा, आप कैसे हैं? उसने कहा, क्या आपका क्या नाम है? और मैंने कहा, ब्रैनम। उसने कहा, आप कहाँ से हैं? यहीं से। और मैंने कहा, नहीं, मैं जेफरसन विले से हूँ। उसने कहा, अच्छा, ये ठीक है, क्या आप पेंटिकॉस्टल हैं? मैंने कहा, नहीं श्रीमान, मैं नहीं हूँ। मैंने कहा, मैं बस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के पेंटिकॉस्टल के तरीके को स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा, हालांकि, मैंने कहा, मैं यहाँ सीखने को आया हूँ। उसने कहा, अच्छा, यह बहुत ही अच्छी बात है, और उससे बात करते हुए उसकी आत्मा को पकड़ रहा था जैसे कुएं पर वो स्त्री। वो एक सच्चा मसीही था भाई, मेरा मतलब है कि वो पूरी तरह से सही प्रतीत हुआ, वह अच्छा था। अब आप सब मेरी सभाओं में कितने लोग आए हैं और उन चीजों को होते हुए देखा है, आप समझे, और वो मनुष्य पूरी तरह से बिल्कुल ठीक था। तो फिर मैंने सोचा वहाँ, ओह क्या ही अद्भुत। लगभग उस शाम को दोपहर के समय में मैं दूसरे एक से मिला। मैंने कहा, आप कैसे हैं श्रीमान? उसने कहा, आप कैसे हैं? आपका नाम क्या है? और मैंने उसे बताया, और उसने कहा, क्या आप पेंटिकॉस्टल हैं? मैंने कहा, नहीं श्रीमान, ना ही वास्तव में पेंटिकॉस्टल, मैं अनुमान नहीं लगाता। मैंने कहा, मैं बस यहाँ पर सीखने आया हूँ। उसने कहा क्या आपने कभी पवित्र आत्मा पाया है? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। मैंने कहा, आप सभी ने जो पाया है उसके अनुसार मैं सोचता हूँ, मेरे पास नहीं है। और उसने कहा, आपने कभी अन्य जुबान में बोला है? मैंने कहा, नहीं श्रीमान। उसने कहा, तब तो आपके पास यह नहीं है। और मैंने कहा, खैर, मैं सोचता हूँ कि यह सही है, मैंने कहा मैं नहीं जानता, मैं बस लगभग 2 वर्षों से प्रचार करते आ रहा हूँ, उससे कम। और मैंने कहा मैं इसके बारे में अधिक नहीं जानता। मैंने कहा हो सकता है मैं नहीं जानता। मैंने कहा मैं नहीं समझ सकता। जो कारण था मैं उसे वहाँ जानने की कोशिश कर रहा था, देखा इसे समझने के लिए। और जब मैंने जान लिया, यदि मैं कभी किसी ढोंगी से मिला हूँ तो वो उनमें से एक था। उसकी पत्नी काले सिर वाली थी और वह एक बुरे सिर वाली महिला के साथ रहता था और उसके 2 बच्चे थे और अन्य जुबानों में बोलता था। इसका बस उतना ही सिद्ध रूप से अनुवाद होता था जितना ये हो सकता था। और मैंने कहा अब प्रभु मुझे इसमें क्या मिला है? दूतों से मैं नहीं जानता था कि मैं किस में था। मैंने कहा मैं मूल सिद्धांत वाला हूँ, इसे बाइबल में होना है, इसे सही होना चाहिए, वहाँ कहीं कुछ तो गड़बड़ है प्रभु, ऐसा भला कैसे हो सकता है। मैं उस रात सभा में गया और वो आत्मा उतर आता है और भाई आप इसे महसूस कर सकते थे कि यह पवित्र आत्मा था। जी हाँ श्रीमान, यदि ये नहीं था, इसने मेरी आत्मा के साथ गवाही दी कि यही पवित्र आत्मा था। और मैं बस एक युवा प्रचारक ही था और यह नहीं जानता था कैसे आत्मा की परख के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था, लेकिन मैं वहाँ पर बैठा हुआ था और मैं जानता हूँ कि वही परमेश्वर जिसने मुझे बचाया, यह वही अनुभूति थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं छत के पार जा रहा हूँ। यह उस इमारत में क्या ही अद्भुत अनुभूति हो रही थी। और मैंने सोचा उनमें से लगभग 1500 वहाँ पर थे और मैंने सोचा ओ मेरे परमेश्वर, उनमें से 2 या 3 झुंड एक साथ मिले थे। और मैंने सोचा बताएं प्रभु यह कैसे हो सकता है। अब वो महान आत्मा इस इमारत में इस तरह से उतर रहा है और यहाँ देखो यह वहाँ पर चल रहा है। वे लोग अन्य जुबान में बोल रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, अच्छी तरह से संदेश को दे रहे हैं और उनमें से एक ढोंगी और दूसरा एक परमेश्वर का सच्चा मनुष्य है। और मैंने सोचा अब मैं पूरी तरह परेशान हो गया, मैं नहीं जानता क्या करना है। तो ठीक है, इसके तुरंत बाद मेरा एक अच्छा मित्र भाई डेविस, आप जानते होंगे, ऐसे कहने लगा कि मैं एक गुड़िया हूँ, यह एक लड़की का खिलौना होता है आप जानते होंगे, और सो मैं अविवाहित था। और तो मैं उसने मेरे साथ चलना शुरू किया और फिर बोलते ही जा रहा था, मेरे साथ थोड़ा हंसी मजाक कर रहा था। और हमारे पास कुछ और आपकी माँ और हम सब अलग अलग स्थानों पर छोटी छोटी सभाओं में जाते थे। उस समय पर आराधनालय नहीं होता था और हमारी अलग अलग स्थानों पर छोटी छोटी सभाएं हो रही थी। और अंत में एक दिन आराधनालय के निर्माण होने के बाद, बहुत वर्षों के बाद, मैं ग्रीन मिल से अपनी गुफा तक प्रार्थना करने के लिए गया क्योंकि भाई डेविस ने उसके अखबार में मेरे बारे में कुछ गलत बातें कही थी। मैंने उससे प्रेम किया, मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी बात हो, और मैं वहाँ ऊपर उसके लिए प्रार्थना करने को चला गया। और मैं वहाँ ऊपर गया और मैं गुफा में गया और मैं वहाँ लगभग 2 दिन तक रहा और मैंने कहा प्रभु उसे क्षमा करें, उसका मतलब ऐसा नहीं था। और मैंने सोचा आप जानते हैं, मैं बस एक वचन के बारे में सोच रहा था और मैं बाहर चला गया और वहाँ एक लकड़ी का लट्ठा था। वो लट्ठा अभी भी वहीं पड़ा हुआ है, यहाँ उस पर पड़ा था, ज्यादा समय नहीं हुआ, पहाड़ से नीचे और एक छोटे से रास्ते में पड़ा रहता है जो छोटी नदी के पास से आता है। और मैं बस पैर को फैलाकर खड़ा हो गया, पहाड़ों के पीछे की ओर देख रहा था, वहाँ पीछे बहुत दूर तक, और मेरी बाइबल को इस तरह से मैंने वहाँ रखा। मैंने सोचा आप जानते हैं, मैं एक वचन के बारे में सोच रहा था। ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं और उन बातों को कहा है, आप जानते हैं। मैंने सोचा मैं सोचता हूँ कि मैं इसे अभी पढूं। मैंने बाइबल खोली और मैंने कहा तो ठीक है, मेरे चेहरे को साफ किया और तेज हवा चली और पन्ना इब्रानियों 6 की ओर पलट गया। तो मैंने कहा यह वो नहीं है जहाँ पर ये वचन है, और मैंने इसे इस तरह वापस रख दिया और हवा फिर से चली और उसे फिर से वापस पलट दिया। और मैंने कहा अब ये अजीब बात है, हवा इसे इस तरह से वापस उड़ा रही है। तो मैंने सोचा तो ठीक है, मैं सोचता हूँ कि मैं इसे पढ़ूंगा, और कहा क्योंकि ये उनके लिए असंभव है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थों का स्वाद चख चुके हैं। मैंने सोचा तो मुझे इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसे आगे पढ़ने लगा, बाकी का अध्याय इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो यही है जो उसके लिए बात को सुलझाता है। और मैंने इसे इस तरह देखा और यह फिर से पलट गया, और मैंने इसे उठाया और मैंने सोचा तो ठीक है क्या है ये। मैं इसे पढ़ता गया और इसे पढ़ता गया और इसे पढ़ता गया। मैंने कहा तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर मैं पढ़ता और मैंने आगे पढ़ा, ये उनके लिए असंभव है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है। यह यहाँ आगे एक स्थान पर आता है जहाँ इसने कहा और जो भूमि वर्षा के पानी को पी पी कर जो उस पर बार बार पड़ती है, जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कंटारे उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है और उसका न्याय जलाया जाना है। मैंने कहा, सोचता हूँ कि इसका क्या मतलब है। मैं वहाँ इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा था, बस इसे सोच रहा हूँ। और तब फिर जब मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैंने सोचा कि प्रभु मुझे भाई डेविस और उनके बारे में वहाँ पर एक दर्शन को देगा। और मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, मैंने देखा और मैंने कुछ तो देखा कि मेरे सामने गड्ढे में बदलते जा रहा है और यह एक दुनिया का बदलाव हो रहा था। और मैंने देखा कि यह पूरी तरह खुला हुआ था, ऐसा दिखाई दिया जैसे यह पूरी तरह से हल जोता गया हो। और एक मनुष्य आगे चला गया एक बड़ी चीज के साथ जो उसके सामने लगी हुई थी, बीज से भरी हुई थी। और जैसे जैसे वो जा रहा था, वो जाते जाते सारी धरती पर बीज को बोता जा रहा था और वो धरती के गोलाई में चारों ओर घुमा और मेरी दृष्टि से ओझल हो गया। और जैसे ही वह मेरी दृष्टि से ओझल हो गया, यहाँ एक मनुष्य आता है जो सचमुच डरपोक काले वस्त्र पहने हुए था, इस तरह से चारों ओर घूमते हुए जा रहा था, खराब बीज को फेंकते जा रहा था। और मैंने इसे देखा और जैसे जैसे धरती गोल घूमती जा रही थी, थोड़ी देर बाद गेहूं ऊपर आता है और जब गेहूं ऊपर आने लगता है, वहाँ उसमें से कटीली झाड़ी आती है और कांटे और जंगली घास पात निकलने लगते हैं और हर एक चीज जो ऊपर आने लगती है और दूध के जंगली पौधे और जो हर एक चीज गेहूं में उगने लगते हैं और वे सब एक साथ बढ़ रहे थे। और वहाँ पर एक बहुत ही बुरा अकाल आया और छोटे से गेहूं का सिर इस तरह से ऊपर की ओर था और वह छोटी सी जंगली झाड़ी और कांटे और उनका सिर उनके ऊपर की ओर था। हर घास पात बस इस तरह से सांस ले रहा था, आप बस उन्हें सुन सकते थे और वे बारिश बारिश के लिए पुकार रहे थे। और कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा बादल आया और पानी तब नीचे की ओर फूट पड़ा और जब पानी वहाँ पर गिरा तो वह गेहूं उछलकर चिल्लाने लगा, महिमा हालेलुया प्रभु की स्तुति हो। ऊपर छोटे छोटे जंगली घास पात ऊपर उछलने लगे और चिल्ला उठे, महिमा प्रभु की स्तुति हो हालेलुया। कांटे और सबके सब खेत के चारों ओर चिल्लाते हुए नाच रहे थे, महिमा हालेलुया प्रभु की स्तुति हो। तो मैंने कहा, मैं इसे नहीं समझ सकता हूँ, दर्शन ने मुझे छोड़ दिया। फिर मैं उस पर वापस चला गया, वो जंगली झाड़ी उगाती है जो निकम्मी होने पर है, तब मैंने पकड़ लिया। यीशु ने कहा, बारिश धर्मी और अधर्मी दोनों पर पड़ती है। एक मनुष्य सभा में बैठ सकता है, अन्य जुबान से बोल सकता है, सच्चे पवित्र आत्मा के साथ उनमें से बाकी लोगों की तरह ही चिल्ला सकता है और कार्य कर सकता है, और फिर भी वो परमेश्वर के राज्य में नहीं हो सकता है। यह बिल्कुल सही है। क्या यीशु ने नहीं कहा, उस दिन बहुत से लोग खड़े होकर और कहेंगे, प्रभु क्या मैंने तेरे नाम में शैतानों को नहीं निकाला, क्या मैंने तेरे नाम में भविष्यवाणी प्रचार नहीं किया, क्या मैंने तेरे नाम के बहुत से बड़े बड़े काम नहीं किए। यीशु ने कहा, मुझसे दूर हो जा तुम अधर्म के काम करने वालों, मैं तुम्हें यहाँ तक जानता भी नहीं। इस बारे में किस तरह से है, यहाँ पर वास्तव में जो इसका अर्थ है, देखा उन्होंने स्वर्ग से अच्छी बारिश को चखा, लेकिन आरंभ से ही वे गलत थे। आरंभ से ही उनके उद्देश्य सही नहीं थे, उनके इरादे ठीक नहीं थे, यह आप नहीं बता सकते हैं। वो आप जानते हैं, कटनी में उसने कहा, क्या मैं आगे जाकर उन सभी को उखाड़ूं? उसने कहा, उन्हें साथ साथ बढ़ने दो और उस दिन पर इन कांटों और झाड़ियों को एक साथ जलाया जाएगा और गेहूं अनाज के गोदाम में चला जाएगा। अब आप कैसे जानेंगे कि कौन से कांटे हैं या कौन जंगली झाड़ी है या कौन सा गेहूं है? उनके फल के द्वारा तुम उन्हें जानोगे। आप देखना भाइयों बहनों, एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सड़क के किनारे कहीं तो यह आपके साथ पाए जाएंगे। सो आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की खोज में हैं। मैं हमेशा ही खुश होता हूँ जिसने इसे लिखा है। देखा, अब वहाँ वे पहले के सीमा रेखा के विश्वासी, वे ठीक उनके साथ थे, उनके खतने के साथ उनका खतना किया गया था, वे ठीक वहाँ उस देश पर चले गए जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, ठीक इसके किनारे तक आए थे। बहुत से लोग उस किनारे तक चलकर आते हैं, वो ठीक पवित्र आत्मा के बपतिस्मे तक चलेगा और इसे अस्वीकार कर देगा। वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। वो ठीक यीशु मसीह के नाम में के बपतिस्मा के वचन तक चलेगा और अपनी पीठ को फेर देगा और इसे देखते रहने से इसे अस्वीकार कर देगा। वहाँ सारी बाइबल में एक भी वचन नहीं है जहाँ कभी किसी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया था। एक वचन भी नहीं है। कैथोलिक कलीसिया ने इसे आरंभ किया, लूथर, आगे वेस्ली में और यहाँ से होते हुए आगे लाया गया। यह बिल्कुल सही है, लेकिन वचन के अनुसार आदेश प्रभु यीशु मसीह का नाम है, यही प्रेरितों का बपतिस्मा है। आप एक संप्रदाय में बने रहकर और इसे नहीं कर सकते हैं, यह सही बात है। अब आप उन चीजों को देखते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आत्मा के दान, वे चीजें जिसे परमेश्वर आगे लाता है। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, धीरज है। ओह, आप कहते हैं लेकिन भाई ब्रैनम, परमेश्वर धन्य है, मैं लंबे समय से धीरज धरे हुए हूँ, यह ऐसा दिखाई देता है। मैं कुछ समय पहले ओहियो गया था और किसी ने मुझसे पूछा, मुझे यहाँ पर एक पत्र लिखा और मुझसे पूछा कि क्या मैं लोगों को यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। मैंने कभी एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने इसे किसी भी तरह जान लिया और 16 सहयोग करने वाले सेवकों ने हाथ पीछे खींच लिए। यही सहनशीलता है, क्या ये नहीं है? धीरज धरना, भलाई, नम्रता, कोमलता, धीरज और पवित्र आत्मा, समझे? ओ भाइयों बहनों, हम कादेश बर्निया में हैं। आप अभी चख रहे हैं। कल रात पवित्र आत्मा हम पर उतर आया, तेज आंधी की नाई हम में आ गया, यह आप में से बहुतों पर ठहर गया। आज सेवक लोग यहाँ और वहाँ के घरों का दौरा कर रहे हैं, हाथों को रखते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो पवित्र आत्मा की इच्छा रखते हैं। आप कोई विकल्प न लें, आप किसी प्रकार के शोर को न लें, आप किसी तरह की अनुभूति होने को न लें। आप वहाँ तब तक बने रहें जब तक कि परमेश्वर आपको आकार नहीं देता और आपको एक नई सृष्टि नहीं बनाता, आपको एक नया व्यक्ति नहीं बनाता। आप इसे अभी चख रहे हैं, बस इसे चख रहे हैं, लेकिन वो पिंडुक को आपको सीधे टेबल तक अगुवाई करने दें और मेमना और पिंडुक एक साथ बैठते हैं और हमेशा के लिए परमेश्वर के वचन का भोज करते हैं, क्योंकि ये बना रहेगा जब वहाँ कोई आकाश या धरती नहीं होती है, परमेश्वर का वचन बना रहेगा, यह सच है। कृपा करके ऐसा न सोचे कि मैं कट्टरपंथी हूँ, यदि मैं रहा हूँ तो मेरा अर्थ यह नहीं था। यदि मैं आशा करता हूँ कि मैंने इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, मेरे पास जो मेरी सर्वोच्च जानकारी है। और इसलिए इब्रानियों 6 में यदि आप देखेंगे कि पौलुस इब्रानियों से बात कर रहा है, जिसने कहा तो ठीक है, हम दूर तक तुम्हारे साथ चलेंगे, वे ऊपर आएंगे। आपने देखा, कहा जब आपने वे जो ऊपर आते हैं और चख चुके हैं। मैंने अभी इमारत में पीछे की ओर देखा, एक जीवित परमेश्वर के प्रमाण को आपको दिखाऊं। मैं आशा करता हूं कि मैं इस व्यक्ति के नाम को ऊंचा नहीं कर रहा हूं। ज्यादा समय नहीं हुआ, मैं एक सभा से आया और यहां पर आया और आपको घोषणा की कि एक अच्छा मित्र, मेरा एक अपना दोस्त, एक शिकार का साथी, एक मनुष्य मेरे लिए भला रहा था, एक मनुष्य जो मेरी कलीसिया में रहा था और मेरा भाई था, मैं उसे बस्टी कहता था, उसका नाम एवरेट रॉजर्स है, वो मिल्टाउन में रहता था। कितने लोगों को याद है कि मैं यहाँ इसकी घोषणा करने आया था? वो यहाँ अस्पताल में पड़ा हुआ था, डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया, उसकी चीड़ फाड़ की और वो पूरी तरह कैंसर से भरा हुआ था कि उन्होंने बस उसे सिल दिया, कहा वो सिकुड़ता जाएगा, कुछ ही हफ्तों में वो चला जाएगा, बस इतना ही उसमें होगा, वह समाप्त हो जाएगा, बस ऐसा ही है। आपको याद है कि कैसे मैं यहाँ मंच पर खड़ा हुआ था, उसके लिए प्रार्थना की, वहाँ पर नीचे चला गया और कमरे के अंदर गया, मेरे हृदय में कुछ तो खा रहा था। मैं कमरे के अंदर चलकर गया और जैसे ही मैंने सबको बाहर किया, जिससे कि मैं, भाई एवरेट वहाँ लेटे हुए थे और आपको ये याद होगा, मैं अंदर चलकर गया, मैंने कहा भाई बस्टी, मैंने उसे बस्टी कहकर बुलाया। बहुत पहले जब हमारी वहाँ नीचे ब्रश आर्बर में सभाई हो रही थी, वे सारे मेथोडिस्ट वहाँ पीछे की ओर जो पहाड़ी पर थे, गर्टी उनमें से एक है, चुपके से वहाँ आते थे, अंगूर के बाग से झांकते थे कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, और इसी तरह से कुछ, वे डरते थे कि मेथोडिस्ट कलीसिया उन्हें बाहर निकाल देगी। और फिर मैं गया और मुझे वहाँ एक दर्शन मिला था और मैंने देखा कि भोजन या मांस एक डिब्बे में पूरा भरा हुआ था। मैंने मछलियों का एक ढेर पकड़ा था और उन्हें बांधा, उन्हें इन डोरियों पर रखा डाला और मैंने उन डोरियों से बांध दिया। और जब मैंने देखा और ये सब एक दर्शन में था। मैंने उस रात ब्रश आर्बर के नीचे खड़े लोगों के एक झुंड को छोड़कर और वहाँ ऊपर भाई राइट के यहाँ पहाड़ी की चोटी पर चला गया और वे मुझे अगली सुबह भी नहीं ढूंढ पाए। मैंने कहा, आप में से कोई भी? जब मैं वहाँ खड़े होकर प्रचार को कर रहा था तो यहाँ वो प्रकाश आया था, वो आग का खम्बा ठीक मेरे सामने आकर यहाँ ठहर गया और कहा, यहाँ से निकलो और जंगल में चले जाओ, मैं तुमसे बात करूंगा। यह वही दिन था अगले दिन जब उन्होंने मुझे ऊपर पहाड़ी पर पाया और मैं वहाँ पर चला गया था। मैंने अपनी कार को घास फूस में छिपा दिया था और सारी रात भर और दूसरे सारे दिन तक एक पहाड़ पर जाकर प्रार्थना कर रहा था। उनमें से कुछ वहाँ ऊपर आए, कार को पाया और वहाँ पर आ गए। यही वो दिन था जब भाई ग्राहम स्नेगलिंग ने यहाँ पवित्र आत्मा को पाया था और उन्हें सेवकाई के अंदर बुलाया गया। वहाँ ऊपर पहाड़ी की ढाल पर मैं वहाँ लेटा हुआ था और उसने मुझे भिन्न चीजों को करने के लिए बताया और हमने जो मिलकर वार्तालाप की थी। उसने इन बंधी हुई मछलियों को देखने का दर्शन दिया, कहा, यह तुम्हारी मिलटाउन कलिसिया है, और उनमें से चार या पांच फड़फड़ा कर निकल गए और मैंने कहा, वो कौन है? कहा, उनमें से एक गाय स्पेंसर और उनकी पत्नी है, दूसरा वहाँ पर एक और स्पेंसर है और वे लोग, और उसने अलग अलग लोगों को बताया कौन फड़फड़ा कर निकलेगा। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा, आप में से कोई भी मत खाना, मैं और मेरी पत्नी नहीं, हमारे विवाह से पहले की बात है। और वो एक बहुत अच्छी महिला बहन स्पेंसर के साथ रात भर रहने के लिए उसके घर पर गई। बहुत अच्छे मनुष्य गाय स्पेंसर, बस वे एक ऐसे भले मनुष्य हैं जैसे वो मजबूती से खड़े हैं। और वो वहाँ पर गया और ओपन ने कहा, अब देखो मेडा से, उसने कहा, अब मेडा मैं भाई बिल पर विश्वास करती हूँ। उसने कहा, लेकिन जब ओपल को भूख लगती है तो उसे सूखा मांस और अंडे खाने पड़ते हैं, इसलिए वो वहाँ जाती है और अपने लिए सूखा मांस और अंडे पकाकर और उन्हें खाने के लिए बैठती है और धन्य कहने लगती है और रोते हुए टेबल पर झुक जाती है, इसे छू नहीं पाती है। इसके बाद वे शिकार करने आते हैं और वहाँ उस दिन पहाड़ी पर उसने मुझे बताया कि वास्तव में क्या बात होगी। उसने कहा, ये चले जाएंगे और उसके बाद ये चले जाएंगे, लेकिन उसके पास डिब्बा भर के भोजन या मांस का एक बड़ा ढेर था। उसने कहा, इसे मिलटाउन लोगों के लिए आगे उपयोग के लिए रखना। और एक रात जब मैंने भाई क्रिश को सुना, वो पिछली रात यहाँ बैठे हुए थे, मैं नहीं, भाई क्रिश क्या आप आज रात में थे? जब भाई क्रिश मेरे पास आए थे तो मुझे फोन किया और बहन क्रिश रो रही थी, उसके पिता वहाँ पर पड़े हुए थे। कहा, भाई बिल उन्हें मत बताना वो मर रहे हैं। कहा, कैंसर उन्हें खा रहा है, डॉक्टरों ने उनकी चीड़ फाड़ की है और वह उतने कैंसर से भरे हुए हैं जितने वे हो सकते हैं। और विल हॉल, और आप सभी को वे याद होंगे, जब उसी डॉक्टर ने उसको चीड़ फाड़ किया और वो कैंसर से बहुत ही भरा हुआ था, मैं उस सुबह गिलहरी के शिकार के लिए निकला था और मैंने उन सेबों को कमरे में लटकते हुए देखा, आपको इसकी वो कहानी याद है? और वहाँ वो व्यक्ति आज जी रहा है, यह वर्षों पहले की बात है। वो और भाई बस्टी मित्र थे और मैं अस्पताल में गया, नए अस्पताल में, मैं भूल गया कि वे इसे क्या कहते हैं जो वहाँ न्यू अल्बानी में है, नया अस्पताल। और मैं वहाँ पर बस्टी को देखने के लिए गया और जब मैं कमरे में गया तो मैंने कहा, भाई बस्टी? उसने कहा, भाई बिल? उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया, पहले के जैसे जोर से हाथ मिलाने के साथ, प्रथम विश्व युद्ध के एक अनुभवी। मैं इसलिए नहीं इसे कह रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन एक पुरानी नीली कमीज के अंदर हमेशा की तरह एक अच्छा हृदय धड़क रहा है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं उसके घर में रहा हूँ, उसके घर में खाया है, उसके घर में सोया हूँ, बस जैसे कि मैं उसका भाई था, उसके बच्चे और सब, हम बस लहू के भाइयों की तरह हैं, भला मनुष्य। और वो, लेकिन वो कभी भी प्रभु के साथ गहराई में नहीं आया। वो, मैंने उसे यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, लेकिन उस दिन जब उस मेथोडिस्ट प्रचारक ने कहा, कोई भी जिसने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है मेरे तंबू के नीचे से बाहर निकल जाओ, यह ठीक था जॉर्ज राइट, और वे बाहर चले गए। उस दोपहर मैं वहाँ टोटेन फोर्ड में यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देने के लिए चला गया। उसके सारे सभा के लोग पानी में उतर गए और उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, तो मैं बस आगे चला गया। यह सब ठीक था, परमेश्वर आपके साथ हो तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? मैं यहाँ तक जानता भी नहीं कि वो मनुष्य कहाँ चला गया, उसके साथ क्या हुआ। हालांकि मैं अस्पताल में चला गया, वहाँ बस्ती पूरी तरह से कैंसर से भरा हुआ पड़ा हुआ था, यहाँ तक डॉक्टर भी कुछ नहीं करेंगे, उसे बस पीछे से एक साथ जकड़ने के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बस्टी ने मुझसे कहा, उसने कहा भाई बिल यह एक उद्देश्य के लिए है, कुछ तो हुआ है। मैंने कहा हाँ बस्टी। उस आत्मा को सनसनाती आंधी की तरह महसूस करना आरंभ किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, आप जानते हैं अंदर आ रही थी। उसने कहा जब मैं यहाँ पर चलकर आया वहाँ उस कोने में एक मेघधनुष था जो उस कोने में ठहरा हुआ था। एक मेघधनुष एक वाचा है, परमेश्वर की वाचा। उस दिन उस पहाड़ पर परमेश्वर ने मेरे साथ वाचा बांधी, मेरे हाथ को भाई बस्टी पर रखकर और उसके लिए प्रार्थना की। डॉक्टरों का कहना है वो सिकुड़ता जाएगा, वह बस जल्दी समाप्त हो जाएगा, वहाँ कुछ भी नहीं, वो बस कुछ ही दिनों में चला जाएगा। और बस्टी रॉजर्स, ये सप्ताह और सप्ताह और सप्ताह पहले की बात है, और बस्टी रॉजर्स आज रात यहाँ कलीसिया में ठीक यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, स्वस्थ और मजबूत जितना कि मैंने कभी उसे अपने जीवन में देखा। खड़े हो जाए भाई बस्टी, वहाँ है वो। आइए हर एक जन परमेश्वर की स्तुति करे।
Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Amen. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Aiye se gaaye. कितने जन उनमें से एक हैं, अपने हाथ को उठाएं। ओ प्रभु, ओ मैं कितना खुश हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ।
Gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
अब जबकि हम उस गीत के भाग को फिर से गाएं, मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक यहां वहां घूमे और आपके आसपास किसी से हाथ को मिलाए और कहे क्या आप उनमें से एक हैं? देखा, अच्छी बात है, मैं जानता हूं कि आप हो भाई नेविल, मैं जानता हूँ कि आप हो भाई कैप्स, मैं जानता हूँ कि आप हो, मैं जानता हूँ कि आप हो। ओह क्या आप खुश नहीं हैं कि आप उनमें से एक हैं? कितने लोग एक होना चाहेंगे? अपने हाथ को उठाएं। तो ठीक है, अब मैं आपके लिए इसे गाने जा रहा हूँ। याद रखें कि छोटी लड़की ने पतरस से क्या कहा, क्या आप उनमें से एक नहीं हैं? मैं बहुत खुश हूँ, क्या आप नहीं हैं? आप जानते हैं पतरस ने पेंटिकॉस्ट के दिन कहा, ये वही है। अब मैंने हमेशा ही कहा है, यदि ये वो नहीं है तो मुझे खुशी है कि मुझे ये मिल गया है। उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा था, ये सही है, मैं इससे खुश हूँ। ओह क्या ये अद्भुत नहीं है, मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठना, आत्मा के साथ वार्तालाप करना, वचन पर वार्तालाप करना, आने वाली अच्छी चीजों के बारे में बात करना, यह बहुत ही अच्छा है। मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ, क्या आप नहीं हैं? क्या आप खुश नहीं हैं कि आप एक मसीही हैं? क्या आप खुश नहीं हैं कि आपके पाप लहू के नीचे हैं? वो इन दिनों में से किसी एक दिन आएगा और हम उसके साथ जाएंगे। तब सोचें, हम में से सारा बुढ़ापा छूट जाएगा, सारी बीमारियां, सारी पीड़ाएं, सारा मरणहार जीवन बदल जाएगा। ओ प्रभु, मैं बस उन पुराने प्रिय भाइयों के बारे में सोच सकता हूँ जो यहाँ खड़े थे। मुझे याद है कितने लोग रवि लॉसन को याद करते हैं। ओ आप सभी लोग, मैं उसे ठीक उस पुरानी छड़ी को लटकाए हुए देख सकता हूँ और मैं वहाँ पीछे बैठा रहता, वो एक छोटे से गीत को गाता। बस एक मिनट भाई टेडी, मैं कोशिश करूंगा, देखें कि क्या मैं इसकी धुन पकड़ सकता हूँ, मैं नहीं जानता। वहाँ मेरे लिए एक सुखद कल की प्रतीक्षा है, जहाँ मोती के द्वार हिलते हुए पूरी तरह से खुलते हैं, और जब मैं इस दुख की घाटी को पार करता हूँ, मैं दूसरी ओर विश्राम करूँगा। किसी दिन मरणहार दृष्टि की पहुँच से उस ओर, किसी दिन परमेश्वर ही जानता है बस कहाँ और कब मरणहार जीवन के पहिए पूरी तरह थम जाएंगे, तब मैं सियोन की पहाड़ी पर रहने के लिए जाऊंगा। जी हाँ, ये छोटे पहिए जो हमारे अंदर घूम रहे हैं, देखना, चखना, महसूस करना, सूंघना और सुनना, ये छोटी छोटी चेतनाएं और पहिए जो इस मरणहार जीवन में घूम रहे हैं, किसी दिन वे थम जाएंगे। तब मैं खुद और आप, हम सियोन की पहाड़ी पर रहने के लिए चले जाएंगे। ओह मैं इसे पसंद करता हूँ, क्या आप नहीं करते? जानते हैं कि हमारे पास वो धन्य आश्वासन है। तो ठीक है, कितने लोग हमारे पुराने बपतिस्मा के गीत को जानते हैं? अब हम इसे बदलेंगे, आइए हमारे समाप्ति के गीत को लें। यीशु का नाम अपने साथ लें, दुख और शोक की संतान, यह तुम्हें आनंद और दिलासा देगा, जहाँ कहीं भी आप जाएं, इसे लें। यीशु के नाम को अपने साथ लें, बस ऐसा करें जब आप जाते हैं। तो ठीक है, अब सब एक साथ गाएं। भूलना नहीं, सुबह 8 बजे सभा के लिए प्रार्थना के कार्ड दिए जाएंगे। सभा 9:30 बजे आरंभ होगी, मैं 10 बजे प्रचार करूंगा। लगभग 11 बजे बीमारों के लिए प्रार्थना की सभा आरंभ होगी। कल दोपहर को, कल शाम को आराधनालय में सुसमाचारक का संदेश होगा, और कल रात आप सब जो अपने पापों से पश्चाताप कर चुके हैं और कभी भी बपतिस्मा नहीं लिया है, वहाँ पर तालाब खुला रहेगा, हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देंगे। अब सब एक साथ मिलकर जब हम अपनी आवाज को ऊंचा उठाकर गाते हैं, भाई बस्ती आप नहीं जानते कि मैं कितना खुश हूँ और परमेश्वर का धन्यवादित हूँ। आप जानते हैं, वो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर ने उनकी ओर देखा और बस समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सोचें। उसने विश्वास नहीं किया कि यह वही व्यक्ति है। ओह, यह कोई रहस्य नहीं है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। क्या यह सही नहीं है? तो ठीक है, यीशु के तो ठीक है, मैं अब सभा को पास्टर को सौंपता हूँ। उनके पास कुछ शब्द होंगे या किसी के लिए बोलेंगे कि हमें विदा करने के लिए जो कुछ भी उनके मन में है।